मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अच्छा बताइए, क्योंकि ये दिल से दिल की बात है, तो बताइए दिल की भाषा क्या है? वाह, डॉक्टर गिरीश पटेल का लेक्चर आपने बहुत ध्यान से सुना, मुबारक हो डॉक्टर गिरीश पटेल को और आपको भी। दिल से दिल के संवाद के लिए दिल की जो भाषा है वो है स्नेह, वो है प्यार। इट इज नॉट लैंग्वेज। लेट्स नॉट डिबेट अबाउट इंग्लिश और हिंदी। व्हाट डॉक्टर गिरीश पटेल वॉज स्पीकिंग अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट, दिल की भाषा, और वो है स्नेह प्यार। दोस्तों, क्योंकि ये दिल से दिल की बात है, मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने की सेवा मुझे मिली है, और क्योंकि दिल की भाषा ऑलरेडी आप जान चुके हो, भले कितना भी मतभेद क्यों ना हो, क्योंकि आप प्रश्न पूछेंगे, हमारे पैनलिस्ट उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे, आप संतुष्ट हो सकते हैं, असंतुष्ट हो सकते हैं, शायद इट मे क्रिएट मोर क्वेश्चंस इनटू योर माइंड, बट माय सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट इज मतभेद नहीं होना चाहिए अगले डेढ़ घंटे के लिए। हाँ, मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। देयर कुड बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट लेट अस नॉट क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ क्वेश्चन आंसर सेशन। तो ये सेशन करीब 12:30 एक बजे तक चलेगा, और मैं चाहूंगा कि एक बजे जब हम यहां से जाएं, तो हम एक बहुत अच्छे एक दूसरे को समझकर, एक अच्छे दोस्त बनकर हम यहां से निकले। तो कौन कौन ये कंडीशन पर अग्री करते हैं वो जरा हाथ उठाएं। ऑल दोस हु अग्री विद दिस कंडीशन प्लीज रेज अप योर हैंड। आरे कई कंडीशन अवर्क एक्सेप्टेबल उन्हें कई पोकियाटे मलयालम मलयालम है, मैं मलयालम में बोलता रहूंगा। यस यस यस, वेरी गुड। सो दैट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। कल से हम लोग बोल रहे थे कि अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सजेशन हो, रेलवेज में, रोडवेज में, आपने पूरे नेशनल में बहुत कॉन्फ्रेंस कराए होंगे, अटेंड किए होंगे, बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आप लोग अटेंड किए होंगे, लेकिन कल से हम लोग पूछ रहे थे अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो आप लोग ये ग्रीन बॉक्स में डाल सकते हैं। राइट नाउ ऑल्सो इट्स अ क्वेश्चन इज ओपन फॉर यू। अभी तक हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आए थे, हम लोगों ने उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे हम लोग। अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये ग्रीन बॉक्स में चाहता हूं थोड़ा नीचे रख दें। कैन वी कीप इट क्लोज बाय सो दैट दे कैन, हाँ यहां पर रखा हुआ है तो, हाँ हाँ हाँ, तो कागज भी है। तो अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, सजेशन है, फिर पेपर इज देयर इन द बुक। हाँ आई थिंक इज देयर इन द बुक। पेपर नहीं है तो मैं सेवाधारियों से कहता हूं कि सर को जरा पेपर प्रोवाइड करें, ताकि उसमें कुछ सर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ पेपर फॉर यू सो यू कैन राइट डाउन। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। और आज के इस दिल से दिल के संवाद में हमारे जो एस्टीम पैनलिस्ट हैं, हम बहुत स्नेह प्यार और सम्मान के साथ उनका स्वागत करेंगे, हमारे आदरणीय दिव्या दीदी जी। और सभी आप एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। यस, दैट लुक्स मोर ब्यूटीफुल। हम दीदी जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं, हमारे आदरणीय दिव्या दीदी जी। और हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं गिरीश भाई, हम गिरीश भाई का भी बहुत दिल से स्वागत करते हैं। कहां गया वो? आ रहा रहा। यस यस, आइए आइए आइए। हम गिरीश भाई का भी बहुत दिल से स्वागत करते हैं आज के इस क्वेश्चन आंसर सेशन में। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे ब्रह्मा कुमारी बहनों से कि वह हमारे आदरणीय दिव्या दीदी जी और गिरीश भाई का फूलों से और बैजेस के द्वारा हम स्वागत करेंगे। और आप लोग जोर से अभी मैं तालियां भी बजा सकते हैं। मोस्ट वेलकम आदरणीय दीदी जी। वेलकम वेलकम। हमारा नाम बीके स्वामी भाई है, मेरे लिए भी तालियां बजा लीजिए। मैं दीदी का परिचय, दीदी और गिरीश भाई का परिचय आप सब तक पहुंचाना चाहूंगा। हमारे आदरणीय दीदी जी से आप पहले इनॉग्रल सत्र में ऑलरेडी मिले हैं। थैंक यू, आई पुट इट लेटर। दीदी जी ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं। दीदी से आप मुलाकात भी किए, लेकिन पिछले 20-21 वर्षों से मैं दीदी जी के साथ सेवाओं में जुड़ा हुआ हूं। और खास खुशी की बात है कि हमको जो ईश्वरीय ज्ञान मिला आज से करीब 21 वर्ष पहले, है ना, मुंबई बोरीवली कनेक्शन से दीदी जी के साथ हम कनेक्शन में आए, और खास कर हमने देखा वो एक बहुत सुंदर माँ के स्वरूप की एक पालना देते हैं, बहुत स्नेह स्वरूप, बहुत प्रेम स्वरूप। और साथ साथ लोगों को बहुत शक्ति भी भरते हैं। दीदी को मैंने देखा, रमणीकता और गंभीरता का एक बहुत सुंदर बैलेंस। दीदी जी की एक दो विशेषता मुझे बहुत अच्छी लगती है, शी इज वेरी वेरी क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव है। सेवाओं में नवीनता कैसे लेकर आना, हमारे अपने आध्यात्मिक जीवन को और पुरुषार्थ को हमें कैसे बढ़ाना, ये बहुत सुंदर विशेषताएं हमने दीदी जी में देखे। और खास करके एक बहुत वंडरफुल विशेषता जो मैंने उनमें महसूस किया, इट इज नॉट जस्ट द आर्ट ऑफ डेलीगेशन। वो क्या करते हैं, किसी भी भाई या बहन में कोई भी विशेषता देखते हैं तो विशेषता को देखकर उनके स्वरूप वो सेवाएं देते हैं, डेलीगेट करते हैं और शांत स्वरूप होकर उनको शक्ति और वाइब्रेशन देते हैं। ऐसे दीदी जी का हम आज के सत्र में बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। दूसरे पैनलिस्ट हैं हमारे प्रोफेसर गिरीश भाई, वो आपके लिए प्रोफेसर गिरीश भाई हैं लेकिन मेरे लिए वो छोटे भाई हैं, मेरे अपने लौकिक भाई हैं वो। ही इज माई ओन यंग ब्रदर गिरीश भाई, और पिछले 20 वर्ष से वो इस ज्ञान में तो चलते ही हैं। और गिरीश भाई की भी बहुत विशेषता है, बहुत मेरे छोटे भाई हैं, बहुत स्नेही बहुत प्रेमी तो हैं ही हैं, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि जब से वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जुड़े हैं थोड़े सुधर भी गए हैं। बचपन में बहुत चंचल थे, वैसे चंचल होना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि छोटे तो अक्सर चंचल होते हैं, लेकिन मैंने देखा गिरीश भाई क्योंकि उनकी एक MBA की बुद्धि है ना, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैं देखता हूँ बहुत क्रिटिकली बातों को एनालाइज करते हैं, राइट। लेकिन जब से वो आध्यात्म के साथ जुड़े हैं तो बहुत भावनात्मक हो गए, बहुत स्नेह स्वरूप हो गए। और खास करके मैंने गिरीश भाई को देखा क्योंकि हम लोग एक ही साथ मुंबई में रहते हैं, तो मैंने देखा कि इतने सारे स्टूडेंट्स उनको काउंसलिंग के लिए फोन करते हैं। स्वामी भाई बड़े भाई के लिए कोई फोन नहीं करता, उनमें कुछ ना कुछ तो विशेषता होगी। मुझे लगता है कि भले वो बहुत क्रिटिकली एनालाइज करते हैं लेकिन बहुत प्रेम स्वरूप होने के कारण बहुत ज्यादा लोग उनके स्टूडेंट्स जो है उनको दिन रात फोन करते रहते। पहले तो मुझे उस पर गुस्सा आता था लेकिन जब क्योंकि मैं भी इस विद्यालय से जुड़ा हुआ हूं तो मैंने कहा उसका वो पार्ट है, जैसे भी बजाना है उसको बजाने दो। और उसके कारण बहुत लोगों को अगर रात की नींद आती है तो व्हाट्स अ प्रॉब्लम इन इट, राइट। तो ऐसे दो पैनलिस्ट को आज हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं। आपको भी इस सत्र में है ना, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन पर आपका भी स्वागत है। ओम शांति। आज का ये संवाद शुरू करने के पहले हम आज के इस ऑडियंस को थोड़ा जानना चाहेंगे। दीदी जी जानते ही होंगे लेकिन हम और गिरीश भाई शायद थोड़ा सा, मैं खास करके थोड़ा सा लेट आया था इस कॉन्फ्रेंस में, इनॉग्रल सत्र में नहीं था, तो जस्ट इट विल टेक 2 or 3 minutes। आप में से कितने भाई बहने हैं जो पहली बार इस ब्रह्मा कुमारी इसके कॉन्फ्रेंस में यहां पधारे, वो जरा हाथ उठाए। आपका स्वागत है, स्वागत है, वेलकम वेलकम। ये 2-3 दिन कैसा लग रहा है, यू आर कंफर्टेबल? यस और नो? वेरी गुड। आप में से कितने भाई बहने हैं जो इंडियन रेलवेज में सर्विस करते हैं, वो जरा हाथ उठाए। ओके ओके, वेलकम सर, वेलकम। अच्छा, आप में से कितने हैं जो रोडवेज के साथ जुड़े हुए हैं, वो जरा हाथ उठाए। आपका भी स्वागत है। आप में से ऐसे कितने हैं जो टूरिज्म सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं? ओके। आप में से कितने बहने हैं जो जीवन साथी के रूप में इंजन के पीछे पीछे डब्बे लगा के आ रहा है, वो जरा हाथ उठाए। वाओ, वेरी गुड, स्वागत है। आपका भी बहुत जरूरत है, इंजन के पीछे पीछे डिब्बे भी पहुंच गए इस आध्यात्मिक यात्रा में, राइट राइट, ठीक है। आप में से कितने हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो जरा हाथ उठाए। अच्छा, स्टूडेंट्स भी हैं, गुड गुड गुड, आपका भी स्वागत है, राइट ओके। चलिए आज क्योंकि हमने ऑडियंस को हम समझ लिए तो उसी के आधार पर हम क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चंस हम लोग कल से ही इस आपके क्वेश्चंस को हम लोग रीड कर रहे थे, तो कुछ एक बहुत पर्सनल क्वेश्चंस थे, कुछ एक बहुत स्पिरिचुअल क्वेश्चंस थे, कुछ जो आज इस सभा में हम लोग ले सकते हैं। तो मैं शुरू करने के पहले, एक एक क्वेश्चन लेने के पहले, क्योंकि आप लोग ने जितने भी क्वेश्चन लिया वो आप बार बार सोचते होंगे मेरा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, मेरा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। अब स्वामी भाई को बहुत प्यार से आप दृष्टि देते रहेंगे, तो आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ अ वाइब्रेशन। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि हम लोग तीनों जो थे आज सुबह, हम लोग थोड़ा बैठ कर इस क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे थे। तो शुरू करने के पहले मैं बताना चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चन जो बहुत पर्सनल हैं, सभा की अपनी एक मर्यादा होती है, तो उस आधार पर कुछ क्वेश्चन अगर नहीं लिए तो आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेशन यहां पर एक मीटिंग रूम है, तो दोनों फैकल्टी अवेलेबल रहेंगे, मैं भी रहूंगा, तो आप पर्सनल अगर किसी से मिलना चाहें आप जरूर जरूर मिल सकते हैं। बहुत डीप स्पिरिचुअल क्वेश्चंस भी किन्होंने पूछा गया, वी रियली अप्रिशिएट दोस क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस दर्शाता है कि आपको अध्यात्म में कितना ना रुचि है। लेकिन वो क्योंकि बहुत डीप स्पिरिचुअल क्वेश्चन हैं तो उसको भी हम लोग इस सभा में नहीं ले पाएंगे. फिर भी अगर आपको उसका जवाब चाहिए तो वी पीपल आर अवेलेबल, राइट. अच्छा, तो किस प्रकार के क्वेश्चन ले रहे हैं? मैं अपने दिल की बात शुरू करता हूं एक भूमिका तैयार करने के लिए. मुझे याद आता है कि आज से 8 या 10 वर्ष पहले की बात है, एक इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग के कॉन्फ्रेंस जब चल रहा था तो इंडियन रेलवेज के एक भाई मेरे पास आए और उन्होंने कहा, स्वामी भाई ये 2 दिन मैं पहली बार इस कॉन्फ्रेंस में आया हूं तो मुझे काफी अच्छा लगा, काफी नई बात सीखने की लगी, आपने काफी आध्यात्मिक यात्रा पर हमको लेकर गए, हम चाहते हैं कि हम भी आपको एक यात्रा कराएं. मैंने कहा आप कहां से हो? बोला आई एम फ्रॉम द इंडियन रेलवेज. मैंने कहा मैं तो हर दिन यात्रा करता रहता हूं. नहीं 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 स्वामी भाई, हम आपको एक स्पेशल यात्रा कराएंगे. उन्होंने फटाफट मेरा नंबर लिया, बोला आई विल कॉन्टैक्ट यू. मैंने कहा यस. जब मैं मुंबई पहुंचा तो आई नेम दिस जेंटलमैन ऑल्सो, हिज नेम इज मसंद भाई, ही वॉज इन द इंडियन रेलवेज पोस्टेड इन मुंबई. तो बार बार मुझे फोन करते थे, स्वामी भाई कब आप यात्रा करोगे, कब यात्रा करोगे. मैंने कहा कौन सी यात्रा? बोला लोकल ट्रेन की यात्रा कराएंगे. मैंने कहा मसंद भाई मैं से वैसे भी तनाव होता है, अब लोकल ट्रेन में चढ़कर तनाव? बोला नहीं 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 स्वामी भाई, आप तो है ना ईश्वरीय बच्चे हो, सेवा हो, मैं आपको स्पेशल यात्रा कराऊंगा. अब 2 दिन का फिर फोन किया, अब फोन पे फोन किए जा रहे. तो मैंने कहा ओके मैं आता हूं. मुझे ना चर्च बीटी रेलवे स्टेशन के नजदीक मेरा एक सेशन था तो मसंद भाई का फोन आया. मैंने कहा 3-4 दिन के बाद मेरा सेशन है तो मुझे वैसे भी जाना है तो मैं ट्रेन में जाता हूं तो चलो हो जाएगा. बोला वेरी गुड स्वामी भाई, मोस्ट वेलकम, क्योंकि मुंबई में कोई सा भी लोकल ट्रेन, कोई भी ट्रेन आप बोलो. मैंने कहा मुझे इस समय पर पहुंचना है बीटी तो कब कर सकते? बोला 1 घंटा पहले काम करो, वाशी में आ सकते हो क्या? मैंने कहा यस, आई एम पुट अप इन नेरूल नवी मुंबई. तो मैंने कहा मैं वाशी में आ जाऊंगा. तो जैसे ही मैं वाशी रेलवे स्टेशन में पहुंचा तो मसंद भाई ने बहुत प्यार से मेरा स्वागत किया और बोला चलिए. आई वॉज वेरी क्यूरियस कि ये स्पेशल यात्रा क्या है. तो सीधे वाशी रेलवे स्टेशन में गए. मैंने कहा अच्छा लोकल ट्रेन तो वैसे भी मैं यात्रा करता हूं. बोला नहीं स्वामी भाई आपके लिए स्पेशल परमिशन लिया हमने. मैंने कहा अच्छा. और सीधे जहां वो लोको पायलट मोटरमैन रहते ना वहां तक लेकर गए और बोला स्वामी भाई आज आप पीछे डिब्बे में यात्रा नहीं करोगे, आप हमारे साथ इस मोटरमैन के साथ यात्रा करोगे. मैंने कहा वाओ नाउ दैट्स अ स्पेशल, आप पहले से बताना चाहिए था ना मसंद भाई. बोला नहीं 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 मैं सरप्राइज देना चाहता था. बोला आई हैव टेकन अ स्पेशल परमिशन फ्रॉम यू स्वामी भाई, फ्रॉम द अथॉरिटीज. मैंने कहा वेरी गुड. तो जैसे हम आई वॉज वेरी एक्साइटेड क्योंकि पहली बार मैं वो है ना उस रूम पर बैठकर मैं यात्रा कर रहा था. तो आई वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. सामने वो कांच वांच था तो आई वॉज जैसे छोटे बच्चे एक्साइट होते ना तो वैसे मेरा भी एक्साइटेशन था. तो वो जो मोटरमैन थे उन्होंने उसका परिचय कराया, बोला ये स्वामीनाथन भाई हैं. और फिर धीरे से मसंद भाई ने उसको कहा कि डू यू हैव अ लॉग बुक? बोला यस. तो उन्होंने मुझे लॉग बुक उससे लिया और मुझे लॉग बुक दिखाया और फिर वो दिखाने लगे और बोला ये जो मोटरमैन है ना इसका पूरा लॉग बुक है और वो अगला 2 हफ्ता से लेकर 1 महीने तक वो कौन से लोकल ट्रेन में कहां वो करेंगे उसका पूरा टाइम टेबल है. मैंने कहा एज अ प्रोफेसर हमारा भी टाइम टेबल मिलता है लेकिन इनका भी टाइम टेबल? बोला यस परफेक्टली, हर दिन में कौन सी ट्रेन में कब जाना है कब उतरना है वो. बोला स्वामी आप इसको नोट करते जाओ. मैंने कहा ओके. वहां से हम वाशी रेलवे स्टेशन से जैसे ही निकले तो ब्यूटीफुल वो सागर से होते हुए जैसे ही मानखुड़ में एंट्री किए तो मानखुड़ में इतना भीड़ कि कुछ पूछो मत. और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हमारी वो इंडियन रेलवे सबका सर टक 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 करके हुए जाएगी क्योंकि इतना नजदीक लग रहे थे. तो मसंद भाई ने कहा स्वामी भाई देखना ये जो मोटरमैन है ही हैड टू स्टॉप एग्जैक्टली एट दैट पर्टिकुलर स्पॉट. अगर आगे पीछे थोड़ा भी हो गया तो बहनों का कंपार्टमेंट, विकलांगों का कंपार्टमेंट, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, लगेज कंपार्टमेंट इधर उधर हो जाएगा. तो इनको इतनी एकाग्रता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली सेम स्पॉट पर उसको रोकना है. आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द चैलेंज दैट दिस मोटरमैन इज फेसिंग. फिर उसके बाद हम लोगों ने वो मानकोट क्रॉस किया और जैसे ही हम कुर्ला रेलवे स्टेशन की तरफ आ रहे थे उन्होंने मुझे बहुत सारा सिग्नल दिखाया. बोला आप देख रह सकते हो? तो मैंने कहा हाँ मसंद भाई बहुत सिग्नल दिखाई देते हैं, अब हमारा ट्रेन का कौन सा सिग्नल है हमें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इतने सारे सिग्नल थे. बोला स्वामी भाई ये जो लोको पायलट मोटरमैन है इसको इतनी एकाग्रता करनी चाहिए, बाई चांस अगर इसने सिग्नल तोड़ा तो पता इनको क्या पनिशमेंट है? मैंने कहा मेरे लिए तो आउट ऑफ सिलेबस है, क्या पनिशमेंट है हमने कभी सोचा नहीं, आप बताइए. बोला अगर बाई चांस किसी भी मोटरमैन ने या लोको पायलट ने सिग्नल तोड़ा तो इमीडिएटली ही इज बीन सस्पेंडेड और फिर एक कमिटी बैठती है जो डिसाइड करती है कि इसको क्या पनिशमेंट देना चाहिए. बट इट इज इक्विवेलेंट टू एन एक्सीडेंट. दैट्स व्हाट मसंद साहब टोल्ड मी एट दैट टाइम. मे बी कुछ चेंजेस रूल्स में हुए होंगे, वो आप मुझे गाइड कर सकते हो. नाउ दैट इज अ चैलेंज दैट दीज पीपल आर फेसिंग. अच्छा, वहां से जैसे हम कुर्ला रेलवे स्टेशन क्रॉस करते हुए वो वड़ाला क्रॉस कर रहे थे मैंने देखा बहुत सारे लोग है ना झूमते झूमते मोबाइल में हाथ करते हुए वो रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे हैं. तो मैंने मसंत भाई को बताया, बाप रे ये देखो ये लोग कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। तो उन्होंने स्टैटिस्टिक्स बताया कि रेलवे पटरियां में जाने या अनजाने में कितने लोग सुसाइड्स करते हैं। और फिर उन्होंने कहा, स्वामी भाई अगर कोई भी व्यक्ति गलती या जानबूझकर अगर आत्महत्या हो जाती है तो पता क्या करना होता है? एज पर प्रोटोकॉल ही वॉज टेलिंग कि द ट्रेन ड्राइवर ही हैज टू गेट डाउन, उस बॉडी को कहीं साइड पर रखना है, वो या तो वो गार्ड को या किसी को वहां के रेलवे किसी को है ना पुलिस को सुपर्द करना है, या जो भी वहां नजदीक है सम रिस्पॉन्सिबल पोजिशन, ही हैज टू गिव अ वायरलेस मैसेज टू द स्टेशन मास्टर या पुलिस स्टेशन एंड देन ही हैज टू कंटिन्यू द जर्नी। जस्ट इमेजिन करिए, सामने एक व्यक्ति कट गया है और जस्ट इमेजिन हिज चैलेंज, ही हैज टू कंटिन्यू विद द जर्नी। और जैसे ही हम लोग वीटी रेलवे स्टेशन करीब एक घंटे के बाद पहुंचे और जब हम अपने मंजिल पर पहुंचे, जब उतरे तो शायद गाड़ी थोड़ी लेट हो गई थी और मसंत भाई ने कहा, देखो स्वामी भाई इतना चैलेंजेस के बाद जब यहां पहुंचते हैं, यही पढ़े लिखे पैसेंजर्स हमारे ऊपर इतना कोसते हैं, इतनी गलत बातें बताते हैं। और फिर उन्होंने धीरे से मुझे लेकर गए और फिर जहां वो मोटरमैन का जो रेस्ट रूम होता ना वहां लेकर गए। और वहां जब मैं बैठा और मैं एकदम शांत होकर बैठा, क्योंकि वाशी से लेकर वीटी तक एक नई यात्रा मेरे लिए थी, तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए एक गिलास पानी लेकर आता हूं। तो एक गिलास पानी लेकर आए तो मैं बहुत शांत था। तो मसंत भाई ने पूछा, कैसी लगी यात्रा? तो मैंने कुछ कहा नहीं, मैं मुस्कुराने लगा। तो फिर उन्होंने कहा, पता है हम आपको ये यात्रा क्यों करा रहे थे? मैंने कहा, आपने ये यात्रा क्यों कराई? बोला, स्वामी भाई ये जो सारे लोको पायलट्स मोटरमैन आप दिखाई देते ना, इनको ये हर दिन चैलेंजेस होता है। और जब भी कोई मोटरमैन इंडियन रेलवेज में ज्वाइन करता है तो उनको ये तो ट्रेनिंग दी जाती है कि गाड़ी कैसे चलाना, कैसे ब्रेक लगाना, कैसे सिग्नल को आइडेंटिफाई करना, पूरा रूल्स उनको सिखाते हैं। लेकिन स्वामी भाई ये जो सारे चैलेंजेस हैं ये मन और भावनाओं के साथ जुड़ा है, जो शायद हमारे लिए आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन 3 दिन मैंने आपके जो कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया, आपके हर फैकल्टी मन के बारे में बता रहे थे, जो मुझे महसूस हुआ दैट इज द रियल सॉल्यूशन। ये पसंद भाई ने मुझे कहा। और फिर लास्ट बात उन्होंने कही, स्वामी भाई ये जो मोटरमैन और लोको पायलट है ना, उनको अपने परिवार के लिए छुट्टी नहीं मिलती है, आपके कॉन्फ्रेंस के लिए कैसे छुट्टियां मिलेगी? फिर उन्होंने कहा, स्वामी भाई मैंने इसलिए आपको बुलाया कि कभी कभी वो लोग नहीं आ सकते तो कभी आप यहां पर आकर इनको कुछ मन की बातें जरूर जरूर उनको बताइए। मैंने कहा, आप अपने ऑफिसर्स को जरूर बताना, हम लोग तो हम और हमारा विंग तो इस ईश्वरीय सेवा में जुड़ा हुआ है, हम जरूर जरूर सेवा हम जरूर जरूर करने को तत्पर हैं, तैयार हैं। आप कितने ना भाग्यशाली जो आज यहां पर पहुंचे हैं, इस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं। इसलिए एक बार अपने लिए जरा जोर से तालियां बजा लीजिए। तालियां क्यों बजाई? क्योंकि वो बहुत वंडरफुल यात्रा के बाद जब भी मैं किसी रोडवेज या रेलवेज के मोटरमैन या ड्राइवर को देखता हूं, उस यात्रा के बाद स्वामी भाई का व्यक्तिगत सम्मान और प्यार 100% आपके प्रति बढ़ा है। और आज सम्मुख आज आपको इस विद्यालय में देखते हुए मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, राइट? ये भूमिका को रखते हुए, ये जो 3 दिन का कॉन्फ्रेंस आप लोग कहते हैं ना कि वाई आर यू नॉट टीचिंग टेक्निकल थिंग, टेक्निकल के लिए तो इंडियन रेलवेज अवेलेबल है, जो आपके लिए वहां आउट ऑफ सिलेबस है, हम लोगों ने बहुत जान समझ कर स्टडी कर, क्योंकि जैसे आप भाई बहन रेलवेज और रोडवेज से, हमारे इस आध्यात्म संस्था में जो काम करने वो भी रोडवेज रेलवेज आपकी तरह काम करते, दे आर पीपल, और उनसे जो हमें फीडबैक मिलता है उसके आधार पर हम लोग ये सिलेबस सेट करते। बट वी आर स्टिल वेरी ओपन फॉर चेंजेस। आपको लगता है कुछ कमी है, कुछ जरूरत है, आप जरूर हमको दीजिए, हम उसको जरूर जरूर भरपूर करने की कोशिश करेंगे। कुछ सिलेबस में भी हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये करीब 10 साल से हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं आपकी सेवा में, आप जरूर फीडबैक दे सकते हैं। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस की बातें। दीदी जी, मैं आपसे पहला प्रश्न पूछता हूं, और सबसे पहला प्रश्न जो मसंत भाई ने मेरे सामने रखा था उसी को लेकर हम लोग शुरू करते हैं। जब अक्सर कर जो प्रॉब्लम जो रेलवे जो पर्सनल या रोडवेज हो उनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है छुट्टियों का प्रॉब्लम, और ये होता है बहुत एक इमोशनल इश्यू है, भावनात्मक। यहां बहुत सारी जीवन साथियां भी बैठे हुए हैं, उनको ये प्रश्न सुनकर बहुत अच्छा भी लगेगा। वो जीवन साथी अक्सर ऐसे कहती होगी, जब पापा ने शादी की बात कही होगी तो कहा होगा ये रेलवे में ऑफिसर है या रेलवे में काम करता है, बहुत अच्छी सैलरी है, पेंशन भी मिलता होगा, ये पापा ने जरूर कहा। लेकिन शायद पापा को जाने अनजाने में पता नहीं होगा कि इसके पास एक लॉग बुक भी होता है, ये शायद पापा को मालूम नहीं होगा, राइट? जब हम लोग दिवाली की छुट्टी, न्यू ईयर की छुट्टी या रमजान ईद की छुट्टी, हैप्पी क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए 3 महीने प्लानिंग करते हैं, और उस समय आपके ऊपर सबसे ज्यादा लोड होता है, राइट? और आपको वो सेवा करनी भी होती है, लेकिन परिवार और बच्चों को जो छुट्टी है उसके लिए बिल्कुल समय नहीं मिलता हुआ। एम आई राइट जीवन साथियां? हाथ उठाओ, ये रियल प्रॉब्लम है कि नहीं? यस। तो ऐसे समय पर जो उनका जो अंदर का गुस्सा आता है, क्रोध आता है कि आप रेलवे में, अगर मुझे पहले से पता होता आपका रेलवे का ऐसा जॉब था तो मैं कभी आपसे शादी नहीं करती थी। पता नहीं आई एम एग्जैजरेटिंग और नॉट, आई डू नॉट नो, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कभी कभी ये संवाद हो सकता है। तो दीदी इसका सॉल्यूशन क्या है? वो इंडियन रेलवे अपने हिसाब से तो सोचती ही होगी, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ इंटरनल कस्टमर डिलाइट की भी बात वो सोचती होगी, लेकिन क्योंकि हम लोग यहां पर एक स्पिरिचुअल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और दीदी आप बहुत भाई बहनों से आप मिलते रहते हो, ऐसे समय पर ऐसे एक चैलेंज के लिए आपको क्या लगता है, जीवन साथी को हम क्या समझाएं, या रेलवेज और रोडवेज में काम करने वाले भाई को क्या समान और क्या करना चाहिए? ओवर टू यू दीदी जी।
ओम शांति। जो प्रश्न पूछा है ना छुट्टी के बारे में, ये स्वाभाविक तो है कि ऐसे त्योहार के अच्छे दिन हो तब परिवार एक साथ हो ना। एक संडे की भी छुट्टी होती है तो भी ऐसे लगता है कि आज सारा परिवार साथ में बैठे, आनंद से, खुशी से खाएं, कहीं घूमने जाएं। तो त्योहारों के दिनों में तो ये सोच आती ही है, और इन्हीं दिनों में फिर छुट्टियां नहीं है तो थोड़ा सा सोच तो जरूर चलता ही है, दुख भी अंदर में होता है। अभी इसमें है कि किया क्या जाए। वास्तविक जो परिस्थिति हमारे सामने है, अब उसके लिए हमें अपने कुछ मानस को तैयार करना पड़ेगा। एक तो यही बात नहीं, लेकिन जीवन के अंदर अन्य भी कई चीजें होती है, उसके लिए जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है उसको हमें एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना होगा। मिसाल के तौर पर अभी आप सब यहाँ कॉन्फ्रेंस में आए, हमने आप लोगों के लिए सोच के रखा था माउंट पर ये कॉन्फ्रेंस रखेंगे, हमने सारी मानसिक फिजिकली सारी तैयारी, सारे वहां के डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया था और वहां प्रोग्राम होना था। अभी अचानक ही बारिश के कारण इस प्रोग्राम को चेंज करना पड़ा। अभी इस समय पर यही यहाँ अन्य और प्रोग्राम भी चल रहे थे, इसलिए हम जो चाहते थे आपके लिए, ऐसा एकोमोडेशन देने के लिए, आपको वो सुविधा देने के लिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। तो अब जो है जैसा है, लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमने दिया आपकी लाइफ की सेफ्टी, क्योंकि पहाड़ी पर जाना, कहीं झाड़ गिरते हैं, कहीं पहाड़ गिरते हैं, कहां भी कुछ भी नुकसान हो जाता है, कुछ ऊपर रह जाए, कुछ नीचे रह जाए ना। तो इस बात को पहले हमने सोचा, यहां थोड़ा कंफर्टेबल कम होगा तो हर्जा नहीं। तो उस परिस्थिति को स्वीकार करके हमें खुशी से ही वो चेंज को स्वीकार करना पड़ता है, तब मन खुश भी रह सकता है और इसमें कर भी क्या सकते हैं ना। कुछ परिस्थिति है जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, तो उसको एक्सेप्ट खुशी से करें। अब जो है उसमें हम कैसे खुश रहते हैं, रह सकें, ये एक सोचना है। दूसरी बात ये भी है इसके अंदर कि भाई छुट्टियों की बात है तो आपके साथ आपके साथी हैं जो आपकी जॉब में, उनके साथ हमारे रिश्ते इतने अच्छे हो। कई बार हमारे पास भाई बहने या सेवा के लिए आए हैं, वो भी छुट्टी लेके आए हैं, छुट्टियों का प्रॉब्लम तो उनको भी आता है, लेकिन वो हमेशा प्लानिंग करके रखते हैं कि भाई जुलाई में ट्रांसपोर्ट की कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम आगे पीछे छुट्टी नहीं लेंगे। और बाकी के समय पर उनके मित्र जो साथी हैं उनको कहते हैं आप छुट्टी ले लो, इस समय पर हम छुट्टी एडजस्टमेंट। तो किसी दिवाली में उसने छुट्टी ली, किसी दिवाली में आप लो, एक तो ये एडजस्टमेंट इसके अंदर करना पड़ेगा। दूसरी बात, कल बैठे थे हम सोच रहे थे इस प्रश्न पर, मैं और स्वामी भाई, तो सोचा कि जो जवान है हमारे देश की रक्षा करते हैं, और हमारे देश की रक्षा माना हमारी रक्षा, हमारी सेफ्टी के लिए उनका जबरदस्त त्याग है। जो आज परिवार से बिछड़ करके कहां झाड़ियों में, कहां पहाड़ियों में, और कितनी टफ लाइफ वो लोग जीते हैं, उनको तो सारे त्योहार वो बॉर्डर पर ही करने पड़ते हैं। कई बार उन छुट्टी में वो घर में भी आए हो और ऑर्डर मिले कि नहीं अभी इमरजेंसी है, दिवाली है, छुट्टी के लिए आया है, छुट्टी भी मिल गई है, आया है, और फिर ऑर्डर मिलता है कि भाई जाना है, तो मेंटली तैयार ना रहना होता है दोनों को। वो बात तो छोड़ दो, कल मैं भाई से बात कर रही थी कि हमारे पास कुछ ज्वेलर्स भाई आते हैं, तो वो त्योहार के दिन और खास कुछ मुहूर्त होता है तो कई दिनों तक रात दिन उनकी शॉप है ना चालू रहती है, तो वो परिवार के सदस्य भी दिवाली के दिनों में उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, तब वो परिवार को लेके बाहर नहीं जा सकते हैं, या परिवार वालों के लिए साथ बैठ के खाना भी नहीं खा सकते हैं क्योंकि शॉप में बहुत ही रश होता है तो उनको रहना पड़ता है। लेकिन वहां है ना हमें कि पैसे मिल रहे हैं, परिवार वाले भी कहेंगे अच्छा कमा रहे हैं तो कोई बात नहीं है? और उनको भी होता है कि भाई इनकम हो रही है तो माइंड नहीं करते हैं, ये भी जॉब है, हमें इनकम की जरूरत है, तो जो जॉब है उस हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, हमको मानस सपना वैसा तैयार करना पड़ेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। काफी क्वेश्चंस यहाँ पर आए, कुछ सजेशंस भी आए, वी हैव रिसीव्ड सम सजेशंस, वी विल सर्टेनली ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन अ कॉन्फ्रेंस। एक क्वेश्चन जो अभी अभी आया मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो क्वेश्चन मैं गिरीश भाई को पूछने के पहले ये जानना चाहूंगा, यहाँ पे कितने हैं जो पेरेंट्स हैं वो जरा हाथ उठाएं, जिनके बच्चे हैं वो जरा हाथ उठाएं। ओके ओके, हाथ नीचे रखिए। आप में से कितने पेरेंट्स हैं जिनको अपने बच्चों से बहुत प्यार है वो जरा हाथ उठाएं। सॉरी सॉरी सॉरी, हैं आप लोग मुझ पर प्यार से दृष्टि दीजिए, गुस्सा नहीं करें, सॉरी, आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन, आई एम सॉरी फॉर दैट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप में से कितने माता पिता हैं जिनको अपने बच्चों से बहुत प्यार तो है लेकिन अपने बच्चों के प्रति बहुत चिंता चलती है वो जरा हाथ उठाए। देखो बहन जी कितना मुस्कुराते हुए हाथ उठा रहे हैं। हाँ स्वामी भाई, आपने हमारे दिल की और मन की बात कही, हाथ नीचे रखिए। वेरी गुड वेरी गुड। तो परिवार को लेकर एक बहुत बड़ा एक जो चैलेंज है, और आजकल हमारे बच्चे हैं, और क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रोफेसर गिरीश भाई बैठे हैं जो सुबह से शाम तक बच्चों के साथ डील करते रहते हैं, तो बहुत चैलेंजेस हमने देखा। और एक सबसे बड़ा चैलेंज जो हमने देखा है, इट्स नॉट जस्ट एडिक्शन बट इट इज विथ मोबाइल एडिक्शन, डिजिटल एडिक्शन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारे एडिक्शंस के साथ साथ गिरीश भाई एक बहुत बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन आया है, तो आप जरा उस पूरी भूमिका से बताना। और बहुत प्यार से किन्होंने प्रश्न पूछा है कि प्यार और दोस्ती में क्या फर्क है, क्योंकि हम लोग कॉलेज में हमेशा देखते हैं कि बच्चे आपस में पहले फ्रेंडशिप डे मनाते रहते, फिर धीरे धीरे आई लव यू, और आई लव यू के बाद क्या होता आप भी जानते हैं और हमारे प्रोफेसर गिरीश भाई भी जानते हैं। तो कहते हैं प्यार और दोस्ती में क्या फर्क है, और बाप एक और क्वेश्चन है, आपके थोड़े बहुत जो बाल हैं वो भी शायद उड़ने के चांस है, उसमें लिखा है क्योंकि मेरा छोटा भाई है, इसलिए आई कैन टेक द लिबर्टी। बहुत प्यार से उन्होंने प्रश्न पूछा है, पावरफुल कौन है, प्यार है या दोस्ती है, राइट? ये जान जाएंगे तो शायद माता पिता घर में जाकर अपने बच्चों का थोड़ा काउंसलिंग कर सकते हैं। ओवर टू यू गिरीश भाई।
ओम शांति। ऐसा लग रहा है कि स्वामी भाई बहुत प्यार से दुश्मनी निकाल रहे हैं। कितना डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन।
भाई मैंने नहीं पूछा, ये यहीं से आया है। अच्छा। मैं तो बस बीच में, आप दोनों के बीच में हूं।
या देखिए, दोस्ती एक रिलेशनशिप का नाम है। दोस्ती में प्यार होना बहुत जरूरी है। प्यार एक इमोशन है, दोस्ती इमोशन नहीं है। दो लोगों के बीच का संबंध का नाम दोस्ती है, दैट आई एम फ्रेंड ऑफ योर्स, लेकिन उस फ्रेंडशिप में प्यार होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एम आई क्लियर? नंबर वन। नंबर टू, किसी भी संबंध में, वैसे तो डॉक्टर गिरीश पटेल भाई ने आपको बहुत ही डिटेल में बताया होगा, लेकिन प्यार को बहुत ब्रॉडली और बहुत विवेक के साथ समझना बहुत जरूरी है। दुख इस बात का है कि आज हम माता पिता अपने बच्चों के कारण दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। प्लीज थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिएगा। मेरे हिसाब से जितना मैंने समझा है, वैसे तो मैं बहुत छोटा हूं, फिर भी आपके सामने मैं अपने ईश्वरीय ज्ञान के आधार से जो ईश्वर परमात्मा ने बहनों के द्वारा मुझे दिया, मैं उसको सामने रख रहा हूं। प्यार अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अच्छा, थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर देता हूं। प्यार ऑलवेज अच्छा है, प्यार ऑलवेज खराब है? कभी कभी अच्छा, कभी कभी बुरा। हाँ, ये जो कभी कभी है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो जाता है। प्यार मेरे हिसाब से, क्रिश्चियनिटी में लिखा है गॉड इज लव, प्यार सदा ही अच्छा है। बस प्यार को थोड़ा सा उसको समझना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। मैं उसको थोड़ा सिंपल आपको बना करके बताता हूं। प्यार मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी एक फीलिंग है, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। ठीक है, मुझे अपनी मां से प्यार है, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। मुझे अपने देश से प्यार है, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। मुझे अपने कार्य से बहुत प्यार है, मैं बहुत पैशनेट हूं इंडियन रेलवे से, मैं बहुत डेडिकेटेड हूं, बहुत सिंसियर हूं क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्ट हूं, क्योंकि मुझे बहुत प्यार है, करेक्ट। लेकिन जब मैं बेटा आप माता पिता से कहता हूं कि मुझे गर्लफ्रेंड से प्यार है, तो फिर आपका चढ़ जाता है। ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है। मैं इससे आप प्यार कर रहे हो उसको बाजू में रख देते हैं, प्यार को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मां का प्यार अच्छा है, लेकिन मैं किसी लड़की से प्यार करूं तो गड़बड़ है। यहां पर हम यूनिवर्सल कंसेप्ट को समझ नहीं पाते। मेरे हिसाब से प्यार माना मिठास है, इज इक्वल टू गुलाब जामुन, इज इक्वल टू शक्कर। शक्कर खाएंगे तो तीखा लगेगा कि कड़वा लगेगा कि मीठा लगेगा? क्यों? हाँ जी, शुगर हो जाएगी। ज्यादा खाएंगे तो शुगर हो जाएगी। शक्कर का प्रॉब्लम नहीं है, आपके पैनक्रियास का प्रॉब्लम है भाई साहब। ठीक है ना, ज्यादा खाएंगे तो शुगर हो जाएगी, इसका मतलब शुगर में प्रॉब्लम है। सबको तो शुगर से प्रॉब्लम नहीं है ना, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है क्योंकि आपका पैनक्रियास उसको असिमुलेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस। हम बहुत अच्छी तरह हमारे पैनक्रियास की गलती शक्कर पे डाल देते हैं। ये थोड़ा सा समझना है, ठीक है। प्यार मीठा है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मेरे जीवन में चार लोग हैं, मेरे माता, मेरे पिता, स्वामी भाई, और मान लीजिए एक मेरी दीदी है। ये चारों का मेरे जीवन में, वैसे तो मेरे जीवन में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये चारों का अनकंडीशनल सेल्फलेस लव है गिरीश के लिए। गिरीश कितना भी गलत काम करेगा ना, तो भी भले ऊपर ऊपर से डांटेंगे, लेकिन कभी मेरे से नफरत नहीं करेंगे।
थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड, वेरी गुड। वाह,
कभी कभी मैं झूठ भी बोल देता हूं, ठीक। बहुत ज्यादा खुश मत होइए, ठीक है। तो चार लोगों का बेटे गिरीश के साथ, भाई गिरीश के साथ बहुत ज्यादा अनकंडीशनल निस्वार्थ प्यार है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, विशेष यंग लोगों को बता रहा हूं। मान लीजिए मेरे जीवन में एक और कोई व्यक्ति आती है, ठीक है, मान लीजिए मेरे साथ ही काम करती है या पढ़ती भी है, वो मेरे लाइफ का फिफ्थ टेबल स्पून ऑफ शक्कर है, क्योंकि प्यार तो शक्कर ही है। तो मान लीजिए मेरे जीवन रूपी ग्लास में मम्मी का एक चम्मच शक्कर, पापा का एक चम्मच शक्कर, स्वामी भाई का तीसरा चम्मच शक्कर, और मेरी दीदी का चौथा चम्मच शक्कर, इन चारों की वजह से फोर चम्मच शक्कर का मिठास प्यार मेरे जीवन में है, ठीक है। अब मेरे जीवन में एक कोई नया व्यक्ति, कोई नया जॉब, कोई नया पर्सनैलिटी या कोई परिस्थिति आता है, ठीक है, और वो मेरे लिए फिफ्थ टेबल स्पून ऑफ शक्कर है। वो मुझसे कहती है आई लव यू, इंडियन रेलवे मुझसे कहता है आई लव यू, मेरी नौकरी लग गई है, ठीक है। इट कुड बी अ जॉब, इट कुड बी अ व्यक्ति, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। अच्छा, या फिर मेरा बच्चा पैदा हुआ है, वो मेरा एक और एडिशनल पर्सनैलिटी है मेरे लाइफ में, और वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, सिचुएशन, जॉब या व्यक्ति। वो मेरे जीवन में फिफ्थ टेबल स्पून ऑफ शक्कर होना चाहिए, क्योंकि प्यार मीठा ही होता है। हम सबको प्यार चाहिए, हम सबको कहते प्यार करिए, प्यार का लेन देन करिए, करेक्ट। अब छोटा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ये फिफ्थ टेबल स्पून, मान लीजिए ये लड़की का पांचवा चम्मच शक्कर मेरे जीवन में आने की वजह से अगर मेरा मेरे माता पिता के साथ संबंध टूट रहा है, अगर उनके साथ मेरा संबंध में मिर्ची पड़ रहा है, मेरा इंडियन रेलवेज के साथ नौकरी करने से मेरा मेरी वाइफ के साथ प्यार का संबंध में कटुता आ रही है, मुझे मेरे बच्चों के साथ संबंध उसको एस्टैब्लिश करने में टाइम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इंडियन रेलवेज के साथ नया संबंध बनाना वो शक्कर नहीं था, वो मिर्ची था, वो नमकीन था, वो कुछ और था, करेला था, वो प्यार कहां से हुआ? प्यार तो सदा मिठास लेकर आएगा। होना क्या चाहिए? मैं इस लड़की के प्यार के चक्कर में मम्मी से झूठ बोलता हूं, इस लड़की के प्यार के चक्कर में मैं अपने दोस्तों के साथ कट रहा हूं। होना यह चाहिए कि इस लड़की के प्यार के चक्कर में फिफ्थ टेबल स्पून ऑफ शक्कर से मेरा जीवन का मिठास बढ़ जाना चाहिए या कम होना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। इस लड़की के प्यार के चक्कर के कारण मेरा सम्मान मेरे माता पिता के लिए बढ़ जाना चाहिए। इस लड़की के प्यार के चक्कर में मेरा रिस्पेक्ट रिगार्डिंग इंडियन रेलवेज के लिए बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि मैं इंडियन रोडवेज के लिए काम करता हूं। आई स्टार्ट लविंग माई फैमिली मोर, आई विल गिव टाइम टू माई, मैं कुछ ना कुछ कंसिडरेशन करके, प्यार से तो शक्ति आता है ना, प्यार से तो त्याग भावना आ जाती है ना। मेरे माता पिता मुझसे क्या कहना चाहिए पता है? आजकल तू हमसे इतना प्यार, आजकल तू हमारे प्रति इतना केयरिंग, हमारे प्रति इतना तेरे को रिस्पेक्ट रिगार्ड क्यों बढ़ रहा है? और अगर बेटा कहे मैं इसीलिए आपसे ज्यादा प्यार करता हूं क्योंकि ये लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है, तो पता है पापा क्या कहेंगे? दो चार और लड़की से प्यार कर ले। लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं हो रहा है। लव इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट कैन हैपन। लेकिन आज प्यार के कारण सुसाइड बढ़ रहा है, प्यार के कारण परिवार टूट रहा है। हम कौन सा प्यार के साथ खेल रहे हैं और क्या नाम दे रहे हैं? बहुत गड़बड़ है। एक्चुअली मेरे जीवन में कड़वापन आ रहा है, उस लड़की के कारण मेरे अंदर और ज्यादा नेगेटिविटी आ रहा है, मेरे अंदर और पॉजिटिवनेस आ रहा है, मेरे अंदर और डर आ रहा है, मेरे अंदर और इनसिक्योरिटी आ रही है, और कहता हूं कि मैं इनसे प्यार करता हूं। तो सही शब्दों का यूसेज करना बहुत जरूरी है। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, द मोस्ट पावरफुल थिंग ऑन प्लैनेट अर्थ मेरे हिसाब से प्यार है, लेकिन हमको सिखाना बहुत जरूरी है।
वेरी गुड, वेरी गुड। गिरीश भाई का जो जवाब है हाँ,
उस पे एक प्लीज कहना चाहती हूँ प्रैक्टिकल अनुभव की।
जी जी।
कि सेंटर पर एक कपल आया था और वो बहुत डिप्रेस थे और डिप्रेशन, चिंता और रोना बहुत था, तो किसी ने भेजा सेंटर पर। और उसका रीजन ये था जो गिरीश भाई बता रहे हैं, उस युगल को एक लड़का एक लड़की, वो लड़के को किसी से प्यार हुआ और वो बहुत ही अयोग्य व्यक्ति थी उनके फैमिली के, और बाहर समाज में भी पता चला कि ये ठीक नहीं है, तो माँ बाप को पसंद नहीं था। और उसी के कारण एक दिन ऐसा बना कि बहन है वो कुछ क्लासेस में गई, कहा कि घर में नहीं लाना लड़की को। तो एक दिन ऐसा मौका मिला, माँ बाप भी नहीं था, बहन भी क्लास में ट्यूशन क्लास में चली गई, तो उसको आज तो घर में कोई नहीं है, तो उस लड़की को लेकर के वो आया। अनायास ही ऐसे हुआ कि उस दिन वो क्लास बंद है, वो लड़की को पता नहीं था, वो आ गई घर में। घर में आई तो उसने देखा कि ये कौन है, बहन को पता था, तो उसने कहा कि भाई मम्मी पापा को पसंद नहीं है, तो तू क्यों ऐसे कर रहा है। उसमें उस लड़की के प्यार में इतना गुस्सा आया, जो एक ही उसकी बहन हथौड़ा लेकर के उसने माथे में पीट के घर के अंदर खून 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 मौत ला दी बहन की। अब बताओ इसको प्यार कहें या क्या कहें। उस लड़की को जेल में भी सेवा के लिए मैं मिलने गई थी। अब ये प्यार है या क्या है सोच
हाँ, तो प्यार तो एक कितना सुंदर एक इमोशन, एक फीलिंग होता है, और हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा जो प्यार के सागर हैं, इट्स सच अ ब्यूटीफुल इमोशन। इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ सैक्रिफाइस, त्याग है इसमें, अपनी खुद की इच्छाओं को। काफी बार हम जैसे जैसे लड़का लड़की के बीच में प्यार होते हैं ना, तो मैं कहता मैं चंद्रमा ले आऊंगा, मैं सितारा ले आऊंगा, ये सारे फिल्मी डायलॉग्स तो बोलते हैं, लेकिन सिंपल वो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। इस सभा में जितने भी बच्चे हैं स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, जरा खड़े हो जाएं, खड़े हो जाओ, शर्माओ नहीं, खड़े हो जाओ। हाँ, तो आज हम आपको एक गिफ्ट देते हैं, क्योंकि आप अपने फैमिली के साथ आए हो ना, एंड दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ फैमिली, FAMILY। तो थोड़ा जोर से उसका फुल फॉर्म बोलो, सभी बोलो, बच्चे जोर से बोलना है ना, बोलो फादर, थोड़ा जोर से बोलो ना, नहीं डराओ नहीं ना, पुअर फेलो पूरा दिन रेलवे रोडवेज में रहता है, उसको थोड़ा प्यार से बोलो फादर, थोड़ा और प्यार भरो, फादर एंड मदर आई लव यू। फादर मदर क्या करेंगे, तालियां तो बजाओ बच्चों के लिए, आई लव यू बोले, सारे घूर के देख रहे, बैठ जाओ। इट शुड बी अ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन। एंड खास करके आप सभी, आप में से कितने हैं जो माता पिता बच्चे सहित यहां पर पहुंच गए, वो जरा हाथ उठाओ, पूरा परिवार का परिवार, अरे वाह, तीन चार परिवार हैं, राइट। बेसिकली दिस इज अ स्पिरिचुअल फैमिली, हम यहां दो तीन दिन से हम यहां पर आए हैं ना, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्पिरिचुअल फैमिली, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल डिवाइन फैमिली। हम सभी आत्माओं परमात्मा के बच्चे हैं, आपस में हम लोग भाई भाई, बहुत वंडरफुल रिश्ता है। तो हमने पर्सनल लाइफ को लिया, थोड़ा सा फैमिली लाइफ को लिया, थोड़ा सा हम लोग प्रोफेशनल लाइफ को भी ले लेते हैं। खास करके मैं दिव्या दीदी जी से ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, दीदी हम लोग दो तीन दिन से यहां पर राजयोग के बारे में सीख रहे हैं, मेडिटेशन के बारे में बहुत सारे प्रश्न इसमें आए हैं, वी रियली अप्रिशिएट ऑल योर क्वेश्चंस, लेकिन इसको एक निचोड़ में अगर हम बताएंगे तो राजयोग क्या है वो तो आगे सीखेंगे भी, कुछ समझ में आ रहा है कुछ समझेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब जैसे चैलेंजिंग सिचुएशन लाइक रेलवेज एंड रोडवेज में काम कर रहे हैं, उस समय ये राजयोग का एप्लीकेशन हम कैसे करें, कैसे हमारे जीवन में अप्लाई वो होता है, कैसे वो मदद करेगा उस पर, जैसे उनकी किस तरह से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में या कार्यकुशलता कार्य क्षमता में ये राज्यों को वो कैसे अप्लाई करें, वो आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
कई बार समझते हैं कि भी योग का अभ्यास माना सारे कार्य से निवृत्त होकर फिर योग करना, वो भी जरूरी है और करना भी चाहिए, लेकिन हम सब प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, गृहस्थ में हैं, व्यवसायी हैं, घर के कार्य हैं, तो वो करते हुए इसका अभ्यास करना जरूरी है। सुरेश प्रभु जी के वीडियो में भी आप सबने सुना, उन्होंने भी कई योग की बात कहते हुए उन्होंने लेक्चर्स में कहा कि ब्रह्मा कुमारी इसका योग मुझे अच्छा लगता है और यूनिक है, और वो आंखें खुली रख करके योग करते हैं, तो इसीलिए आंखें खोल करके कार्य न भी हो, आप देखते होंगे कि हम मेडिटेशन में बैठते हैं आंखें हमारी खुली होती है, खुली आंख से अभ्यास होने से आप कार चला रहे हो, आंखें खुली रखनी पड़ेगी, बंद करके तो नहीं चला सकेंगे, अभी योग करना हो तो आंखें बंद करने का अभ्यास है तो कार नहीं चला सकेंगे, कार चलाओ तो योग नहीं कर सकेंगे। लेकिन यहाँ बहुत सरल और सहज विधि इस विद्यालय में बताई गई है कि हम कोई भी कार्य जब करते हैं तो हमारे सोच में कोई न कोई व्यक्ति या वस्तु रहती ही है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तब और कुछ दिमाग में नहीं है, ऐसे होता है, होता है नहीं? तो उसको लेते हुए उस सोच में आप काम कर रहे होते हैं, मित्र संबंधी या आपके ऑफिस आपके व्यवसाय आपकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको साथ में लेकर के आप कार्य तो कर रहे होते हैं ना, तो उसी प्रकार से योग माना आप अभी आगे सुनेंगे और सुना है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, परमात्मा हमारे पिता है तो उनके स्मृति में उनको याद करते हुए हम कार्य करें, चाहे कार चलाते हैं चाहे ट्रेन चलाते हैं, और आप कई बार देखें कि बहुत आपको बहुत जिससे प्यार है उसकी याद आ जाए तो आप खुश होते हैं, खुशी होती ही नहीं है, और जब कोई कार्य आप खुशी से करते हो और जब उनसे प्यार है, मैंने नोट किया है अपने आप को भी, और वो खुशी है वो प्यार है तो मैं जो काम करती हूँ ना वो भी बहुत प्यार से करती हूँ, जब किससे नफरत है मुझे है? और उसकी याद आ गई तो उस समय पर जो मेरे एक्शन चल रहे हैं, जो मैं कार्य कर रही हूं ना, उससे भी मुझे नफरत होती है। इसीलिए यहां कहा जाता है कि घर के कार्य चाहे व्यवसाय के जो भी करो, वो परमात्मा प्यार में। मीरा की बात है कि मीरा को भी कृष्ण से प्यार था, क्या वो कुछ नहीं करती थी? उनका जीवन था तो कुछ प्रवृत्ति कार्य तो था ही ना, खाती भी वो कृष्ण के प्यार में थी, नाचती थी वो भी कृष्ण के प्यार में, गोपियां भी कृष्ण के प्यार में नाचती थी। खाना बनाना, खाना मिलना उसको हर जगह पर, कृष्ण कृष्ण वो प्यार 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 ही। और इसलिए औरों को भी प्यार से, एक वृक्ष के पत्ते को भी इतने प्यार से वो देख पा रही थी जितना हम प्यार से वो नहीं देख पाते, क्योंकि उसमें भी वो कृष्ण को देखती है। तो देखो, देखने का कर्म वो भी कितना अच्छा सुंदर प्यार भरा हो गया। क्यों? उनके स्मृति पे प्यार था। इसलिए हम भी अपने जो भी कार्य करते हैं वो परमात्मा प्यार में, उनकी याद में करेंगे तो सब यथार्थ योग्य होंगे और बहुत प्यार और खुशी से करेंगे, उनसे कभी नुकसान नहीं हो सकता है।
बहुत अच्छा दीदी जी, बहुत सुंदर। अब दीदी ने एक बात कही तो मुझे एक याद आता है जो मसंत सर भी मुझे कह रहे थे कि रेलवेज और रोडवेज में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता, राइट? मुझे याद आता है एक बार मैं स्कूल के बच्चों को, मैं सेशन ले रहा था तो मैंने बच्चों से पूछा, अच्छा बच्चे बताइए कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चों ने कहा सर मेडिटेशन, ध्यान, प्रेयर करना चाहिए। तो मैंने उनको पूछा, अच्छा बताइए जब मेडिटेशन करते हो तो आंखें बंद करके करते हो कि आंखें खोल करके? तो एक छोटू खड़े होकर कहता, सर हमको तो हमारी टीचर कहती है आंखें बंद करो, हम लोग एक आंख खोलते हैं तो टीचर की नजर पड़ जाती है, आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। तो आंखें खोलने के लिए आप कह रहे हैं? मैंने कहा ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लॉजिकली। मैंने कहा बच्चों अच्छा बताइए, आप जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो आपको एकाग्रता चाहिए? बोला यस। तो मैंने कहा जब आप पढ़ाई पढ़ते हैं तो आंखें खोल करके पढ़ते हो कि आंखें बंद करके? सर आंखें तो खोल करके पढ़ाई की जाती है। मैंने कहा आपके पापा को एकाग्रता चाहिए क्या? बोला यस सर। मैंने कहा कब चाहिए? बोला सर जब वो गाड़ी चलाते हैं। तो मैंने कहा बताओ गाड़ी चलाते वक्त आंखें खोल करके गाड़ी चलाते हैं कि आंखें बंद करके? सर क्या बात करते हो सर, आंखें खोल करके तो गाड़ी चलाई जाती ना। मैंने कहा मम्मा को? तो छोटू को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मम्मा को एकाग्रता चाहिए कि नहीं, चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बच्ची थी वो हाथ खड़ा की। मैंने कहा बताओ? बोला यस सर मेरी मम्मा को एकाग्रता बहुत चाहिए सर, जब वो भोजन बनाती है कभी नमक डालना भूल जाती है, कभी इतना नमक डाल देती है, और सर मेरी मम्मी बहुत प्यारी मम्मा है, आंखें खोल करके भोजन बनाती है सर। तो जस्ट इमेजिन व्हेन यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल और अ ट्रेन, यू रिक्वायर सो मच ऑफ लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इसीलिए हम जब यहां राज्यों का अभ्यास आज तक नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे हम जरूर सीखें और उसको समझें और उसको हम हर वक्त, दैट विल मेक अस अ कर्मयोगी, राइट? अच्छा गिरीश भाई, कर्मयोगी को लेते हुए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं, हम अक्सर उनको कहते हैं कि यू शुड बिकम वेरी वेरी सक्सेसफुल। शायद हमारे जो भी भाई बहन है यहां पर रेलवेज में या रोडवेज में ज्वाइन करते, तो इस सपने को सजाकर वो ज्वाइन करते हैं कि सफलता, सफलता के लिए जो हमेशा सिखाया जाता है, यू शुड फाइट फॉर इट, बहुत युद्ध करना पड़ता है, भागना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जैसे ही वो यहां पे स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो यहां पर थोड़ा सा एकदम साइलेंट, पीस, हैप्पीनेस, न्यारे प्यारे, डिटैच होना, तो वहां सक्सेस के लिए यू शुड बी वेरी वेरी एक्सट्रोवर्ट। स्पिरिचुअलिटी इज टीचिंग अस टू बी वेरी वेरी इंट्रोवर्ट। तो एक ऐसा प्रश्न आया जहां पर उस कैंडिडेट ने लिखा है कि वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो एज आप स्पिरिचुअलिस्ट भी हो और काफी इंडस्ट्रीज में जाके ट्रेनिंग भी देते हो, तो इसका हम बैलेंस रखें या क्या रखें? ओवर टू यू।
ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। जनरली लोगों के मन में ये मान्यता होती है कि अगर आप आध्यात्मिक बन जाएंगे तो फिर आपको प्रॉफिट, सफलता, प्रमोशन, अच्छे पद पर जाना, इन सब से आपका मन हट जाएगा। बच्चों को आध्यात्मिकता अभी मत बनाओ, सन्यासी मत बनाओ, कुछ बन जाएं उसके बाद फिर आध्यात्मिक बन जाएं। हमेशा ये माना जाता है कि जो भौतिकता होती है, जो मटीरियलिस्टिक लाइफ होता है, और स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा सा आपस में 36 का आंकड़ा है। जितना मैंने समझा है ब्रह्मा कुमारी इसमें ईश्वरीय ज्ञान को, ऐसा नहीं है। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट यू डू, रादर वेरी 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 इंपॉर्टेंट हाउ यू डू इट। आप क्या करते हैं ग्रॉस लेवल पर, तो क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन अगर सूक्ष्म में देखा जाए तो हम उसको कैसे करते हैं, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, अवार्ड लेना, अपने जीवन में प्रमोशन लेना, ऊंचे पद पर जाना, घर, गाड़ी, बंगला, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना, उनका इंश्योरेंस, उनका भविष्य के लिए धनार्जन करना, आध्यात्मिकता के विरोध नहीं है ये, लेकिन कैसे कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। आप चिंता से काम कर रहे हैं, चिंता होकर के, इनसिक्योर होकर के, डर कर, परेशान होकर, किसी की सफलता को देखकर अंदर जल रहा है, अगर ये सब भावनाओं के आधार से मैं वो पद पा भी लूं तो उसका सुख नहीं मिलेगा। तो जो कैसे है, द हाउ पार्ट ऑफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आध्यात्मिकता ये कहता है कि आप बहुत शांति से, प्यार से, आंतरिक शक्तियों के आधार से प्रॉफिट कमाएं, आंतरिक शक्तियों के आधार से हम बहुत अच्छा जीवन को चलाएं। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको प्रॉफिट नहीं कमाना है, आपको प्रमोशन नहीं लेना, आपको उच्च पद नहीं लेना है, बल्कि हम ये मानते हैं कि जब हम आध्यात्मिक बन जाते हैं, हमारा पूरा फोकस इंटरनल होता है। मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा, स्वामी भाई कॉन्सेंट्रेशन आंखों के बारे में दीदी कह रहे थे, डिस्ट्रैक्शन भी आंखों से नहीं होता है, डिस्ट्रैक्शन भी मन से ही होता है। मन में विचार आएगा कि इसको देखूं या नहीं देखूं, ये तो कर्मेंद्रियां है, ये तो हार्डवेयर है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात को मानेगा। अगर मन ने कह दिया है कि मुझे नहीं देखना है, आपकी आंखें वहां जाएंगी नहीं। मन ने कह दिया है मुझे ये समोसा खाना नहीं है क्योंकि मेरा पेट ठीक नहीं है, तो मुख जबरदस्ती खाएगा क्या, हाथ जबरदस्ती समोसा को उठाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मन में आ गया एक खा लेता हूं ना, पिछले एक हफ्ते तो खाया ही नहीं है, तो मन विचलित होता है, मन डिस्टर्ब होता है। इट इज नॉट दिस फिजिकल आईज, इट इज दिस इमोशनल, हमारा जो सटल ऑर्गन है। ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग जो है पूरा फोकस करता है आंतरिक शक्तियों पर। तो अगर हम कहें कि भौतिकता और आध्यात्मिकता का अर्थ ये नहीं है कि मैं भौतिक सुखों को त्याग कर दूं, वो होते हुए भी उस सुख के ऊपर मेरा डिपेंडेंसी ना हो, है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करूंगा, मर मर के, तकलीफ से, टेंशन से, इरिटेटेड होकर के नहीं करूंगा, बहुत प्यार से, शांति से, खुशी से, संतुष्टता से, आत्मा कंटेंटेड होकर के प्रयास करेगी। प्राप्ति हुई उस लेवल पर भी मन की स्थिति उतना ही समान।
आई थिंक वी आर एबल टू गेट द आंसर्स। थैंक यू गिरीश भाई, हम वेरी गुड क्वेश्चन उसी को लेते हुए, राइट आप में से कितनों को भूख लग रहा है वो जरा हाथ उठाए। अरे वाह, क्या मन शक्तिशाली बन गया है, वेरी गुड। तो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपको मैं जल्दी से जल्दी छोड़ दूंगा, लेकिन क्योंकि वो मन के बारे में आया ना, तो एक बार मैं अपने एमबीए स्टूडेंट से पूछा था, हाउ डू यू डिफाइन मैनेजमेंट, सर द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल सर। मैंने कहा टेलर का जमाने का डेफिनेशन मत बोलो, गुलामी के जमाने का डेफिनेशन, वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, इमोशन स्टडी। मैंने कहा थोड़ा अच्छा जवाब दो ना ये। तो एक बच्ची ने खड़े होकर कहा, सर मैनेजमेंट इज मैनेजिंग रिसोर्सेस। मैंने कहा दैट्स ब्यूटीफुल, विच रिसोर्सेस, मेन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, मेथोडोलॉजी, राइट। मैंने कहा वेरी गुड, नाउ ऑल दिस 5M कैन ओनली बी मैनेज व्हेन यू आर एबल टू मैनेज द 6th M, एंड दैट इज द ह्यूमन माइंड। फिर मैंने कहा बचपन से लेकर एमबीए तक बताइए व्हाट परसेंटेज ऑफ द सिलेबस फोकसेस ऑन दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स एंड दैट्स द ह्यूमन माइंड। और वो बच्ची बहुत मुस्कुराते हुए कह रही, सर आउट ऑफ सिलेबस सर ये सब नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है। आप में से हैं इंडियन रेलवेज की इतनी ट्रेनिंग प्रोग्राम आप करते हैं, राइट, हमारे आदरणीय प्रोफेसर साहब यहां बैठे हैं फ्रॉम द बड़ौदा ट्रेनिंग स्कूल, मन के बारे में सर कितना फोकस किया जाता है, शायद बहुत कम है। सी दैट्स अ वेरी ऑनेस्ट कन्फेशन, नहीं होता। और कल हम बैठ रहे थे, मैं इसलिए सर का नाम ले रहा हूं क्योंकि कल वो बैठ रहे थे और हमारे साथ ये डिस्कस कर रहे थे कि ये मन को हम कैसे इंटीग्रेट करें। इंडियन रेलवेज को और बड़ौदा के ट्रेनिंग स्टाफ कॉलेज को लिए एक बार जोर से तालियां जरूर बजा दीजिए। एंड वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू योर टीम, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू गुप्ता सर जो बैठकर इस बात को महसूस कर रहे थे। And that's the greatest dakshina that you gave to us last evening, sir. ये संकल्प करना कि इस प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टाफ कॉलेज में हम कहां तक, और कल आपके जो हम लोग स्वरूप देख रहे थे हमें बहुत अच्छा लग रहा था, राइट? जो दो तीन दिन से जितनी हमारी थकावट हो गई थी ना, वो कल के मीटिंग में मुझे लगता है काफी ना समाप्त हो गए. एंड वी आर फीलिंग सो गुड अबाउट योर इंटेंशंस. होता है नहीं होता है, कहां तक कर पाएंगे, दैट्स डिफरेंट. बट यस्टरडे यू मेड अस वेरी लाइट, यू मेड अस वेरी हैप्पी, राइट? ये मन की बात है. तो एक क्वेश्चन जो मैं आदरणीय दीदी जी से जरूर इनपुट लेना चाहूंगा. दीदी जी कहते हैं मन को कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल होता है, ये हम लोगों ने आज तक शास्त्रों में सुना है. एक क्वेश्चन जो बहुत अलग अलग स्वरूपों में आपके हमारे सामने आया कि मन को हम कैसे मैनेज करें, राइट? खास करके मेडिटेशन में बहुत सारे विचार इधर उधर भटकते हैं, खास करके तो मेडिटेशन करते वक्त विचार तो भटकते ही हैं, और जब हम ऑफिस में जाते हैं तो एक बहुत बड़ा उसका रिएक्शन दिखाई देता है. वो पता नहीं आप में वो जरूरत है या नहीं, पता नहीं, लेकिन उसका एप्लीकेशन, उसका सिम्टम नजर आता है. आप में से कितने भाई बहने हैं जिनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, वो जरा हाथ उठाओ. अरे वाह, 3, 4, 5 जितनों ने भी हाथ उठाया, आफ्टर दिस सेशन प्लीज गिव मी ईमेल आईडी एंड फोन नंबर. हम लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नरेंद्र मोदी जी को भेज देंगे और उनको कहेंगे भारत रत्न नहीं तो एटलीस्ट उनको पद्मश्री तो देना चाहिए. बाप रे, रेलवेज में काम करते हो, रोडवेज में काम करते हो, बिना गुस्सा किए. सी, दे आर योर पीपल.
एक डाउट है, शादीशुदा है क्या वो लोग?
गिरीश भाई आप ना, हम पद्मश्री देने की बात कर रहे हैं, दिल की बात कर रहे हैं, बीच में शादी को लेकर सारा गड़बड़ करते हो. शादीशुदा होकर वो मैं नहीं प्रश्न पूछ रहा हूं, है, मैं रेलवेज के ऑफिस की बात कर रहा हूं. अरे वाह, तो आपके जीवन साथी को पद्मश्री मिलना चाहिए क्योंकि आपको श्रेष्ठ संस्कार उन्होंने दिया ना. वेरी गुड. अच्छा, आप में से कितनों को लगता है गुस्सा करने से ही काम होता है, वो जरा हाथ उठाएं. अच्छा वाह, है ना, वेरी गुड वेरी गुड. दो तीन क्या काम होता है ये मैं गिरीश भाई से एंड में पूछूंगा, लेकिन आप में से कितनों को दो तीन दिन बिल्कुल यहां पर गुस्सा नहीं आया, वो जरा हाथ उठाएं. वाह, कैसा लगा, कैसा लगा, अच्छा लगा ना, कर सकते हो, मन को मैनेज किया. दीदी जी आपसे प्रश्न ये है कि मन को हम मेडिटेशन में कैसे मैनेज करें, और इसका अभ्यास यहां कर जब हम इंडियन रेलवे रोडवेज में जाते हैं तो क्या बिना गुस्सा किए वहां पर हम लोग कैसे मैनेज करें? एंगर इज अ वेरी ग्रेट एप्लीकेशन. तो वो जरा, आप में से कितनों को लगता है ये प्रश्न बहुत जरूरी है, वो जरा हाथ उठाएं. इसलिए मैं हाथ उठा रहा हूं क्योंकि कोई सोना नहीं, क्योंकि अभी जाने का भी वक्त हो रहा है ना, इसलिए भी मैं हाथ उठाता रहूंगा. ओवर टू यू दीदी, और ये प्रश्न जरूर अच्छी तरह से सुनना. ओवर टू यू.
मन की जो बात है, तो मन को हमें अपने हिसाब से चलाने की प्रैक्टिस, जो मन है इतनी आयु तक, जिसकी यहां बैठे हैं जितनी भी आयु है, अभी तक हमने उनको फ्रीडम दे रखी थी, स्वतंत्रता दे रखी हो, और फिर उनको कहें कि अब मेरे हिसाब से चलना, तो मुश्किल तो लगता है क्योंकि इतने समय से फ्री रहने की संस्कार हमारे बन गए हैं. मन को जहां चाहिए वहां वो चला जाए, जो चाहिए वो करे, उस पर कोई अंकुश, कोई कंट्रोल, कोई देखने वाला भी नहीं था. और अब हम ये चाहते हैं मेडिटेशन करने के लिए कि मन को कैसे हम कंट्रोल करें. तो मैंने जो अपनी लाइफ में अभ्यास किया है, जब यहां आई तभी, कि पहले मेडिटेशन में बैठने की बात के पहले मैं सोचती हूं कि उसके पूर्व मेरा मन अभी क्या कर रहा है. कभी मैंने ये भी देखा कि मेरा मन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है. मन को जब शांत करती हूं तो मन बाहर भागता है, ये हम सब कहते हैं, लेकिन हरेक का मन कोई एक ही जगह पर नहीं भागता है. भाग करके कहां जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है. किसी का मन शांत बैठे होंगे, टीवी देखने में जाएगा, किसका खाने में जाएगा, किसका घूमने में जाएगा, किसका कहां, किसका कहां का. तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मेरे मन का आकर्षण का केंद्र क्या है. आप नोट करना कि जब आपका मन शांत होता है, हर समय पर उसी जगह जाता है, क्योंकि आपका आकर्षण उस चीज पर है. और जब मुझे ये पता चल जाए कि आकर्षण यहाँ पर है, अभी उसको मैं चेंज कैसे कर सकती हूँ, कैसे उसको मोड़ सकती हूँ, तो पहले मन को शांत करके उनको जानना जरूरी है कि उसको क्या चाहिए, और वो चाहना के बाद उसमें क्या चेंज। हमेशा मैं एग्जांपल देती हूँ कि बच्चा छोटा होता है, वो कोई कांच का खिलौना लेकर के, उसको तो जो आया वो खेलना शुरू कर देता है, कांच की कोई चीज पकड़ के खेलना शुरू कर देता है, उसके नुकसान का उसको पता नहीं है। अब वो आप जानते हो कि उनके लिए नुकसानकारक है, तो वो चीज आप फर्श से खींच लेंगे, वो नाराज होगा, रोने लगेगा, आपके प्रति नफरत का भाव भी आएगा, लेकिन उसकी जगह पर एक सुंदर लकड़ी का खिलौना, आप उसको खेलना है उसको, उसको जरूरी नहीं है कि कांच ही चाहिए, आप और कोई खिलौना दे दो और वो दो, वो आराम से छोड़ देगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मन भी ऐसा ही है बच्चे जैसा, मन के अंदर कोई थॉट्स, कोई विचार जरूर है, उसके बिना नहीं रहता, लेकिन उसको क्या सोचने के लिए देना है, एक लेना है तो दूसरा दो, फिर वो ले लो, तो मन को मैनेज करना आसान होगा। अभी कुछ ही समय पहले ही वहां मेडिटेशन के लिए हम कुछ इकट्ठे हुए थे, अलग अलग वे अपनाने पड़ेंगे मन के लिए। तब मैंने कहा कि हम एक सॉन्ग बजा रहे हैं, अभी आपको सिर्फ सिर्फ वो जो गीत है उनके वर्ड्स को आप सुनना, और सुनने के बाद आपके मन के अंदर वो क्या भाव क्रिएट होते हैं, सिर्फ उसको देखो। तो मैंने देखा और उसके बाद पूछा, कहते कि बहुत अच्छी एकाग्रता रही और मन कहीं गया नहीं। उसके बाद और एक तरीका अपनाया, किस चित्र को देखो और उसके बारे में ही आपको सोचना है, और जब व्यक्ति देखता है तो वो सोच चलता भी है, उसके अलावा और कुछ नहीं। जब उसकी गहराई में जब वो बातें सोचने लगे तो और कोई सोच नहीं आया। तो मन को इस प्रकार का अभ्यास प्रैक्टिस कराने की जरूरत है, और वो वैसे आदत ही बन जाएगा, वैसे हैबिट बन जाएगी, फिर हम जिस समय पर जो उसको कहेंगे ना वो करने के लिए तैयार। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस की काफी इसमें जरूरत है, और मैंने देखा है कि इस प्रकार के अभ्यास से मन धीरे 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 इतना शांत, इतना पीसफुल और इतना शीतल हो जाता है ना, और वो शीतलता का जो सुख मिलता है, जो आत्मा को आराम मिलता है, वहां का वायुमंडल, उस कमरे का स्थान भी इतना पीसफुल हो जाता है कि उसके बाद कोई गुस्से का प्रसंग भी आए ना, तो इमीडिएट गुस्सा करना ये पॉसिबल ही नहीं होता है। और वहां तक कि उसके अंदर प्रवेश करने वाला व्यक्ति, उसको भी गुस्सा करना प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये एक्सपीरियंस की हमें जरूरत है, तो गुस्से पर भी कंट्रोल और हमारे मन को भी हम चलाना सीख जाएंगे। आज तक मन ने हमको चलाया है, हमने मन को नहीं चलाया है, तो अब सीखना है उसको चलाने के लिए। ओम शांति।
बहुत बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से हम सभी भाई बहने इस सेशन से बहुत संतुष्ट हुए। गिरीश भाई, बस एक दो क्वेश्चन और है, लेकिन आप जरूर सुनना, क्योंकि जब हम प्रश्नों की बात कर रहे थे तो मैं काफी रेलवे में जो काम करने वाले भाई बहनों से भी मैं मिल रहा था पिछले दो दिन, एंड वन ऑफ द मेजर एरिया गिरीश भाई इज अ हेल्थ सेक्टर, स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा चैलेंज आता है। खास करके मैं एक दो इनपुट आपको देना चाहूंगा। नंबर वन इज कुछ एक दो भाई ने हाथ उठाया और कहा कि गुस्से से ही काम होता है, वो उनका चॉइस है, उनकी अपनी स्वतंत्रता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा फ्रॉम द हेल्थ सेक्टर कि क्या गुस्सा करने से हमारे हेल्थ में कितना प्रभाव पड़ता है। नंबर वन, जस्ट लिसन टू द थ्री क्वेश्चंस, कनेक्टेड क्वेश्चंस है। नंबर टू, आज हम लोग सभी जगह जो देखते हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो व्यसन, एडिक्शंस, वो चारों तरफ है, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। तीसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमारे पास आया है और वो मैं आपके साथ देना चाहूंगा। खास करके मुझे कुछ लोको पायलट्स मिले और उन्होंने कहा, मैंने कहा आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, उन्होंने कहा खास करके कहा जो लोको पायलट जो शताब्दी राजधानी या दुरंतो चलाते उनको चार चार घंटे यात्रा करना पड़ता है। अब हम स्वास्थ्य के लिए कहते हैं समय पर खाना चाहिए समय पर पीना चाहिए, ये तो हम लोग तो डायलॉग स्टेज पर तो खड़े होकर कह देते हैं। जस्ट इमेजिन दैट लोको पायलट वो तीन चार घंटे के बाद नेक्स्ट रेलवे स्टेशन आता है और उनको अपने बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए भी वॉशरूम की फैसिलिटी उसमें नहीं होती है, तो काफी खास कर उनको एक स्वनियंत्रण करना पड़ता है यू नो अपने बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए। तो ये तीनों प्रश्नों का जवाब सॉल्यूशन कुछ मन से लेकर तो कनेक्टेड है ही, इसको आप उनको कैसे एक सॉल्यूशन देंगे? अगर इंडियन रेलवे के पास एक ऑप्शन है कि वो लोको पायलट के लिए भी एक छोटा सा वॉशरूम बांधे, दैट इज योर लुकआउट, लेकिन जब तक वो हो कैन स्पिरिचुअलिटी या मन कैन गिव अ सॉल्यूशन इमीडिएट सॉल्यूशन टू दैट पर्सन?
जी पहला प्रश्न था क्रोध को लेकर के कि क्रोध से हमारे हेल्थ में क्या असर होता है। मेडिकल साइंस ने बहुत अच्छी तरीके से मेडिकली इसको प्रूव कर दिया है कि एंगर जो होता है हमारे बॉडी केमिस्ट्री को डिस्टर्ब करता है, हमारा ब्लड प्रेशर को, हमारे बाकी जो जो भी चेंजेस होते हैं उसको वो अब्रप्ट कर देता है। सो मेडिकली हेल्थ वाइज एंगर एज एन इमोशन इट डजेंट हेल्प इन एनी वे। यहां पर अगर आप थोड़ा और डिटेल में हमारा एक कैड प्रोजेक्ट चलता है हार्ट अटैक्स पे, डॉक्टर जो हमारे आदरणीय पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, जब वो डीआरडीओ के चीफ रहे हैं उनके साथ मिलकर ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग ने 8 साल रिसर्च किया, हमारा यहाँ पे कैड का ऑफिस भी है, आप उनसे भी मिल सकते हैं, और उसका जो संशोधन किया 8 साल और उसका जो रिजल्ट ये था, जब हमारे मन में नेगेटिव इमोशंस आते उसका जो प्रेशर होता है जो लोड होता है हार्ट पे उसकी वजह से आर्टरी ब्लॉकेजेस होते हैं। सो एंगर का डायरेक्ट नेगेटिव असर हमारे हेल्थ पे होता है, नंबर वन। एंगर का डायरेक्ट नेगेटिव असर हमारे संबंधों पर होता है। आपने कुछ गलती कर दी हो मान लीजिए और मैंने चिल्लाकर आपको कहा कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, तो पता है आपके मन में क्या भावना आएगी? गलती किया ये तो ठीक है लेकिन चिल्लाना नहीं, तो गाली क्यों दे रहे, मुझे पता है मैंने गलती की लेकिन साथ में मुझे आपकी भी गलती नजर आ रही है, यू कुड हैव डन इट इन अ बेटर वे, हाउ पार्ट फिर से आ जाता है तो संबंध बिगड़ जाता है। दूसरा प्रश्न स्वामी भाई का ये था, और शांति को मैं जितना धारण करूंगा उतना इजीली मेरे जीवन से क्रोध निकल जाएगा। दूसरा प्रश्न स्वामी भाई का ये था कि किस प्रकार से व्यसनों को हम हैंडल कर सकते हैं। देखिए जो व्यसन है ये एक बाह्य चीज है, जैसे कि सिगरेट है या फिर शराब है या फिर कोई भी ड्रग्स है या निकोटीन है या ब्राउन शुगर है, इसकी जरूरत मानव को इसीलिए पड़ता है क्योंकि वो अंदर से कमजोर है। मैं दुखी हूं, मैं स्ट्रेस में हूं, मैं परेशान हूं, मैं जीवन की समस्याओं को हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, इट इज एन इंटरनल वीकनेस, और ये इंटरनल वीकनेस से हटने के लिए मैं और सोच नहीं सकता हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उस वक्त मैं ये नशीले पदार्थों का सेवन करता हूं, तो उस नशे के इफेक्ट में उस वक्त मेरा मन बहुत हल्का फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं 4 चांद में पहुंच गया हूं। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, मैंने चिंतन को ठीक नहीं किया है, मेरा डिपेंडेंसी उस वस्तु पे बढ़ गया है। हम ये कहते हैं आध्यात्मिकता या फिर मेडिटेशन भी एक नशा है, लेकिन इस नशे का कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, उस नशे का साइड इफेक्ट्स होता है लंग्स खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा, लिवर खराब हो जाएगा, उसका बहुत सारा नेगेटिव इफेक्ट भी होता है और मेरा डिपेंडेंसी उसमें बढ़ जाएगा। आध्यात्मिकता भी एक नशा है, मैं क्या करना चाहता हूं वो नशीले पदार्थ लेकर एकदम भूल जाना चाहता हूं, डिटैच हो जाना चाहता हूं, कुछ भी याद ना आए जब तक उसका असर रहे। आध्यात्मिकता भी यही हमें सिखाता है कि मुझे पता है प्रॉब्लम है, मुझे पता है समस्या है, मुझे नहीं पता उसका समाधान क्या है, लेकिन राइट नाउ वो सिगरेट पीने की बजाय मैं मेडिटेशन करता हूं, डिटैच हो जाता हूं, उससे अलग हो जाता हूं। जितना देर मैं मेडिटेशन करूंगा उतना मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी। मेडिटेशन में ईश्वर से शक्तियां लेना बहुत जरूरी है, जितना वो शक्ति आएगा उसका पॉजिटिव इफेक्ट ये होता है कि मैं उस समस्या को और अच्छी तरह हैंडल कर सकता हूं क्योंकि मेरे अंदर शक्ति आ जाता है. सो वो भी नशा है लेकिन नेगेटिव है, ये भी एक नशा है लेकिन ये नारायणी नशा हम कहते हैं. इससे हमारी एनर्जी भी बढ़ जाएगी और मैं समस्या का समाधान भी कर सकता हूं. तीसरा प्रश्न स्वामी भाई का ये था कि हम ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं, उसमें हमको थोड़ा कन्वीनियंस का प्रॉब्लम हो जाता है, तो कैसे करें. ये देखिए, मैं अगर आपको दूसरे प्रोफेशंस के बारे में बात कहूं, विराट कोहली, अच्छा चलिए विराट कोहली छोड़ दी, वीरेंद्र सहवाग मॉर्निंग बैटिंग करने जाता है, लंच टाइम तक बैटिंग ही करता जा रहा है और दौड़ता भी जा रहा है, उसको थकान भी हो रही है, वो फिजिकली भी एग्जर्ट कर रहा है, उसको कॉन्सेंट्रेट भी करना है क्योंकि ऑपोजिशन 11 टीम उसको आउट करने का प्रयास कर रहा है. सिर्फ वो ही नहीं, शायद 1,00,000 लोग स्टेडियम में बैठ के उसको देख रहे हैं. सिर्फ 1,00,000 नहीं, टीवी में संसार भर के लोग जो वीरेंद्र सहवाग को बहुत बड़ा आइकन मानते हैं वो भी देख रहे हैं. उसको किसको 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 खुश करना है. जहां पर बहुत प्यार है, जहां पर, लेकिन वीरेंद्र सहवाग या सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन या लता मंगेशकर या फिर हमारे यहाँ के भाई बहनों को या हमारी दीदियों को या हमारे आदरणीय ब्रह्मा बाबा को आपको देखें, उनको पहचाने, इन्होंने ये सब काम नहीं किया. सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने का काम नहीं करता है, ही लिव्स वाइल प्लेइंग क्रिकेट. लता मंगेशकर जब गीत गाती है तो काम नहीं करती है, वो जीती है. अमिताभ बच्चन जब एक्टिंग करता है तो वो काम नहीं करता है, वो भी रात भर शूटिंग करते हैं. ऐसे काफी उदाहरण आपने देखा होगा, दो दो तीन तीन रात तक वो सोते नहीं है लेकिन उनको इतना नशा रहता है. रविंद्रनाथ टैगोर जी जब कंपोज कर रहे हैं तो वो काम नहीं करते हैं. कोई साइंटिस्ट जब किसी चीज का आविष्कार करता है तो वो काम नहीं करता, उसके लिए न टाइम न सिचुएशन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है. यहां के भाई बहनों को आप देख लीजिए, इतनी निस्वार्थ सेवा करते हैं. तो क्या मैंने वो जो डेफिनेशन है, प्रॉब्लम वो 4 घंटा नहीं है, प्रॉब्लम वो इंजन चलाना नहीं है, प्रॉब्लम एग्जाम नहीं है, प्रॉब्लम पढ़ाई करना नहीं है, एक प्रॉब्लम कपड़ा धोना नहीं है, प्रॉब्लम किसी से काम करवाना नहीं है, प्रॉब्लम है मेरा अप्रोच टुवर्ड्स दैट वर्क क्या है, मैंने उसको किस मान्यता से पकड़ के रखा है. मुझको एग्जाम का डर है, एग्जाम से प्यार नहीं है. प्यार होगा तो अच्छी फीलिंग आएगी, डर है तो फिर डर के पढ़ूंगा फिर मुझे मार्क्स नहीं मिलेगा. आई नीड टू ब्रिंग अबाउट लिटिल चेंज इन द वे आई लुक एट माई वर्क. So, कल से अगर मैं समझूं कि मुझे यहां बैठकर आपसे बातें करना है तो वो मेरे लिए काम नहीं है, कल से मेरे लिए खाना बनाना काम नहीं है, कल से मेरे लिए ऑफिस जाना काम नहीं है, कल से मेरे लिए पढ़ाई करना काम नहीं है, कल से मेरे लिए स्कूल जाना काम नहीं है, कल से मेरे लिए वो जीवन का एक बहुत अभिन्न अंग है. आई विल लिव वाइल स्टडिंग, आई विल लिव वाइल वर्किंग, आई विल लिव वाइल कुकिंग, वेयर लाइफ इज लॉस्ट इन लिविंग वाला हाल हो गया है. सब तो
गिरीश भाई का बहुत बहुत दिल से थैंक्स. और गिरीश भाई जब जवाब दे रहे थे तो हमारे घर घर के छोटू हमें याद आए, कार्टून शो के सामने बैठ जाते हैं.
उनको कोई
3 घंटा वो कार्टून शो देखते रहते. कभी बाथरूम याद आता है? बहने जब सीरियल्स देखते हैं, नहीं नहीं आप लोग तो अच्छी बहन है. हमको समझ में नहीं आता क्योंकि व्हाट ही सेड मेक्स अ वेरी गुड आंसर. कि आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि जो मन जो होता है आपके शरीर से ज्यादा, वो क्योंकि शरीर तो आपका रथ है ना, यू आर द मास्टर ऑफ योर शरीर. इतनी खुशी, इतनी आनंद कि आप सब कुछ भूल जाते हो. जो सारे महान लोगों का उन्होंने नाम दिया, दे सो पैशनेट अबाउट द वर्क. आई थिंक मे बी ही वॉज गिविंग अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल, ट्राइंग टू क्रिएट एन एनालॉजी. गिरीश भाई, लास्ट 1 मिनट में आप इसका जवाब देते हुए मैं लास्ट क्वेश्चन दीदी के पास जाऊंगा, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है तो समय को लेकर ही आपसे प्रश्न पूछूंगा. काफी बार हमारे भाई बहन यहां तो सुनते हैं लेकिन बाहर जाते साथ कहते हैं कि ये सब तो ठीक है लेकिन हमको मेडिटेशन करने के लिए टाइम नहीं मिलता है. तो टाइम इज अ वेरी वेरी मेजर चैलेंज. तो आप एकदम 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर ये जवाब देने की कोशिश करना.
इनर पावर फॉर सेफ्टी, इनर पावर टू टेक टाइम. वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. आप आइडेंटिफाई करें फालतू में टाइम वेस्ट हम कितना करते हैं, उसी टाइम को अगर हम बचा लें तो 60 मिनट 45 मिनट आधा घंटा हम जीवन से अपने लिए, आत्मा के लिए, उसको चार्ज करने के लिए, मेडिटेशन के लिए हम अवश्य निकाल सकते हैं. मेरे हिसाब से एक बहुत ही रॉयल कन्वीनियंट एक्सक्यूज है हमारे पास कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है. मुंबई में आइए, लोग कहते हैं सांस लेने की फुर्सत नहीं है, अच्छा दीदी कह रहे मरने की फुर्सत नहीं है. So that shows ignorance of human life to its height. Om Shanti.
नहीं, आपके स्टूडेंट्स को तो सचमुच टाइम नहीं होगा. सुबह उठते ही साथ गुड मॉर्निंग सारी दुनिया को भेजना होता है ना, व्हाट्सएप मैनेजमेंट, फेसबुक मैनेजमेंट, फिर कहते हैं हमारे बच्चों को मेडिटेशन करें.
Yes, where there is a will, there is always a way. Last question, because we'll take care of the time factor. Last question to Adarane Didi ji. समय को हमें कैसे सदुपयोग करना चाहिए? और कल एक दो वीडियोस में हमने जो गिरीश भाई का एक बहुत सुंदर वीडियो है एम्बुलेंस दादा की बात कही, राइट? अपना समय निकाला, अपना परिवार से समय निकाला, अपना धन लगाया और कितनी सेवाएं की। तो दीदी जी, मैं आपसे दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहला प्रश्न कि यहां पर जितने भी भाई बहने हैं, हम और आप शायद एम्बुलेंस दादा तो नहीं बन सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जो ईश्वरीय सेवा में ये दुनिया को बेहतर, नहीं तो घर परिवार को बेहतर बनाने के लिए हम लोग क्या योगदान दे सकते हैं? हाउ कैन वी यूटिलाइज दैट टाइम? क्योंकि आप ईश्वरीय सेवा में समर्पित अपने जीवन को कर रहे हैं, तो बहुत सारी प्रेरणाएं इनको भी आप दे सकते हैं। और जाते जाते ये भी हमें बता दीजिए कि इस ब्रह्मा कुमारीज का आइडियोलॉजी क्या है, लक्ष्य क्या है? ऐसे एक दो क्वेश्चन इस विद्यालय को भी लेकर आए हैं और वो कह रहे थे कि यहाँ का जो सारा कारोबार कैसे चलता है, किस लक्ष्य से ये भाई बहने यहाँ पर आते हैं। और आपने देखा होगा जितने भी भाई बहने आपको भोजन में सेवा कर रहे हैं, यहाँ सेवा कर रहे हैं, नन ऑफ देम आर बीन पेड, दे आर नॉट ऑन ऑफिशियल ड्यूटी। वो सारे छुट्टी लेकर आपकी सेवा में लगे हैं। जो बहने आपको परोस रहे ना, अब एक बार उनसे पूछेंगे आप कौन हो, आपका परिचय दोगे, तो बहुत मुस्कुराते हुए कहेंगे आई एम डॉक्टर सो एंड सो। आपने शायद कभी पूछा नहीं होगा। बहुत साधारण परिवार से लेकर बहुत पढ़े लिखे लोग भी आपके पास वो जो सेवाएं कर रहे हैं, राइट? अपना परिवार को छोड़ते हुए यहां पे सेवा कर रहे हैं। नन ऑफ देम आर बीन पेड एनीथिंग। वो खुद अपना टिकट बुक करके आए हैं। आप लोग तो शायद ऑफिशियल ड्यूटी में सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन वो खुद अपनी सेवाएं लेकर आते हैं, अपना टिकट बुक करते हैं, अपना टिकट बुक करके वो जाते हैं। तो एक बार दिल की बात करें तो उनके लिए तालियां तो बजा सकते हैं ना दीदी। तो ये बात है कि हम लोग क्या सेवाएं कर सकते हैं, इनके मन में प्रश्न उठता होगा, या ब्रह्मा कुमारी इसका आइडियोलॉजी क्या है, लक्ष्य क्या है। द लास्ट क्वेश्चन टू दीदी जी।
अभी स्वामी भाई ने कहा कि जो यहाँ सेवा करने आए हैं कुछ डॉक्टर्स भी हैं, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन के वाइफ है, बोरीवली में ही एक भाई है कि जो बिल्डर है काफी बड़े, उनके घर में खाना बनाने वाली सर्वेंट है, फिर ड्राइवर है, और वो सर्वेंट के बजाय बाकी भी सर्वेंट है, और कोई गेस्ट आए तो पानी देना, नाश्ता देना, चाय देना, इस प्रकार की उनकी लाइफ है काफी वर्षों से। पिछले मैं समझती हूँ कि 2-3 साल से वो अभी आ रही हैं, लेकिन वो यहाँ सेंटर पर आकर के सब्जी काटती है, झाड़ू निकालती है, बर्तन मांझती है, जो भी हमारे पास गेस्ट आते हैं तो उनके लिए चाय बना के ले जाती है। तो जो उनके घर में जो नौकर करते हैं ना, वो सब काम वो सेंटर पर, हमारे सेवा स्थान पर वो करती है। तो हमें भी थोड़ा और लगता था कि भाई इस प्रकार के काम उनके घर में तो कभी किए नहीं है, लेकिन इतनी रुचि से, इतने अच्छे से, और हम मना करें ना तो भी प्यार से, लेकिन कहती है कि यहाँ आकर के मेरी जिंदगी बदल गई है, मेरे परिवार से, मेरे संबंधियों से जो मुझे नहीं मिला है वो मुझे यहाँ मिल रहा है, और मैं उससे खूब संतुष्ट हूँ। और इतनी वो साइलेंस में रह गए और इतनी प्यार से और इतनी परफेक्ट सेवा करती है, सुबह से दोपहर, शाम से लेकर के रात तक एक्यूरेट। वो भी अभी आई हुई है जो आप सबको भोजन खिलाने में है। भाव ये है कि जहाँ स्नेह, प्यार, सेवा का भाव है, तो आपके परिवार के अंदर भी आप उस बहन के एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि इस विद्यालय के अंदर ऐसा क्या मिलता है। कुछ तो है, कुछ मिले नहीं और कुछ छोड़े ऐसा मानव कर नहीं सकता है। तो जरूर प्राप्ति है, लेकिन कुछ थोड़ा समय देकर, हमारा बेसिक 7 डेज कोर्स है जिसको आप सुनिए ध्यान से, एकाग्रता से, उसका अभ्यास स्टार्ट करें। उसमें कोई घर छोड़ना, व्यवसाय छोड़ना, संबंध छोड़ना ये नहीं है। थोड़ा वक्त रोज अभ्यास के लिए निकालना ये जरूरी है। और कोई भी चीज प्रैक्टिस के बिना कोई परफेक्ट किसी भी काम में नहीं होता है। तो उसके लिए भी वक्त देख करके हमें करना पड़ेगा। और जब आपके एक्सपीरियंस में वो बातें आ जाएगी तो नेचुरली आप अपने घर के सदस्यों के साथ, आपके जो भी संपर्क में संबंध में आने वाले लोग हैं उनके साथ का आपका अप्रोच बदल जाएगा। और वो परिवर्तन ही आपको पूछेंगे वो लोग कि कैसे, पहले तो नहीं थे ऐसे, अब कैसे ऐसे हो गए। तो आप उनकी सेवा कर सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि कहाँ जाते हो, क्या सुना, आपको क्या मिला है। और कहीं से अच्छी चीज मिले तो पहले परिवार के सदस्य ही तो याद आते हैं, अपने मित्र ही तो याद आते हैं कि उनको बताएं, उनको दें। आप जितना बता सको आपका एक्सपीरियंस बताओ, नहीं तो हमारे सेवा के स्थान हैं जहाँ नजदीक हो वहां ले जाकर के सेवा। इसलिए मैं कई बार सोशल सेवा करने वालों को भी कहती हूँ कि आज कपड़ा दे देना, अनाज दे देना, किताबें दे देना, दवाई दे देना, जॉब दिलवा देना, ये तो सब कर सकते हैं। लेकिन आज कोई मानव के मन की सेवा करने वाला कोई है? फैमिली मेंबर भी ना, आज गुस्सा हम कर बैठते हैं, क्यों कर बैठते हैं? उनके मन का हमको ख्याल नहीं है ना, कुछ भी बोले, कुछ भी वो उनके मन को, रोता रहे, डिप्रेशन में चला जाए या उसका बीपी बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, हमें उसका ख्याल नहीं है, इसीलिए तो गुस्सा कर पाते हैं। यदि उनके मन का ख्याल मुझे हो तो मैं गुस्से से नहीं बोल सकूंगी। मन की सेवा इस सबसे बड़ी सेवा है, और इसीलिए हम कॉन्फिडेंस के साथ, गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय हर एक मानव के मन की सेवा, जो विश्व में कोई नहीं कर रहा है वो सेवा, और वो बहुत अति आवश्यक सब फील करते हैं। और वह सेवा आप सबको भी यहाँ से जाने के बाद अपने परिवार के संबंधी, मित्र, पड़ोसी सबकी ये सेवा करना जरूरी है, क्योंकि आपको भी संतुष्टता मिलेगी, सेटिस्फेक्शन, उनको भी आप सेटिस्फेक्शन अपने जीवन में दे सकेंगे। हम तो दो दिन से ही देखो आपको देख रहे हैं, लेकिन आप आए तभी आपके फेस, और आज अभी देख रहे हैं चेहरों में चमक आ गई है, देखो चेहरे में कितना चेंज आ गया है, कितना रिलैक्स हो गए हो ना। कोई चिंता है यहाँ, कोई फिक्र है नहीं, तो जो खुद को मिला है वह हमें औरों को भी देना है। ओम शांति।
बहुत बहुत
स्वामी भाई, मैं एक लाइन में
जरूर लीजिए।
स्वामी भाई ने पूछा ब्रह्मा कुमारी का आइडियोलॉजी क्या है, मैं आइडियोलॉजी, ऑब्जेक्टिव और उसका तरीका तीन लाइन में बताना चाहूंगा, और आप क्या सेवा कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लक्ष्य ये है कि आप एक अच्छा पापा, अच्छी मम्मी, एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा पति, एक अच्छी पत्नी,
ब्रदर,
एक अच्छा एक अच्छा भाई, एक अच्छी बहन, एक अच्छा एम्प्लॉय, एक सक्सेसफुल एम्प्लॉय, ये ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा लक्ष्य है। तरीका स्टेप नंबर टू, आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसके बिना नहीं हो सकता। जितना मैं रोल कॉन्शियस में रहूंगा गड़बड़ हो जाएगा। आत्मा को समझकर आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए नंबर तीन परमात्मा बहुत जरूरी है। अच्छा बनने के लिए आत्मा और परमात्मा, ये तरीका है। अच्छा बनिए, अर्थात आप जब वापस जाएं तो आपके घर में आपके बच्चे, आपके पति पत्नी, मामा मामी, सास ससुर, वो कहें कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा मुस्कुरा कैसे रहे, इतने शांत कैसे होकर के आए,
और चेहरे में चमक आ गई, फेयर एंड लवली।
आप बहुत अच्छे बने, सुखी बने, सुखदाई बने, बहुत प्यार से चलें, प्यार बांटे, शांत रहें, शांति बांटे, ना डर, ना चिंता, ना भय, ना शांति, ना इरिटेशन, ना गुस्सा, इन सबको यहां छोड़ करके वहां जाएं और आपके बच्चे आपसे और ज्यादा प्यार करें, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। उसके लिए आत्मा और परमात्मा ज्ञान।
जो यहाँ से एक बारी डॉक्टर्स का ग्रुप हम ले आए थे, फिर वहाँ गए तो उनको एक्सपीरियंस सुनाने के लिए कहा, तो उनकी वाइफ नहीं गई थी, डॉक्टर गए थे, फिर जब सुनाने की बात थी दोनों आए थे, तो हमने उस डॉक्टर का नाम दिया कि आप आइए डॉक्टर खटाओ, आप अपना अनुभव सुनाइए। तो उनकी वाइफ खड़ी हो गई, कहती वो अनुभव क्या सुनाएंगे, अनुभव तो मैं सुनाऊंगी। मैंने कहा आप गए नहीं है, जो वहां गया है वो अनुभव सुनाए। तो कहते नहीं, अब उनके जीवन में क्या चेंज आया है वो तो मैं ही बता सकती हूँ। तो वो उसने आकर के एक्सपीरियंस सुनाया कि पहले जब आते थे घर में तो उनका चेहरा देख के ही मुझे डर लगता था, और इतनी उनकी सेवा में मैं व्यस्त हो जाती थी, अभी मुझे वो करना नहीं पड़ता है। वो आने वाले हो तो पहले से मुझे टेंशन होता था, अभी मैं रिलैक्स रहती हूँ। काफी बातें उसने उनके जीवन की, कि उनका जीवन का परिवर्तन तो मैं ही बता सकती हूँ, उन्होंने फिर अनुभव सुनाया।
बहुत बहुत अच्छा दीदी, और गिरीश भाई की जो बातें थी वो हम सभी के मन और दिल को स्पर्श किया। यस और नो? आप में से कितने भाई बहन यहाँ जो बैठे हैं जो संतुष्ट हैं वो जरा हाथ उठाएं। देखिए देखिए, बहुत अच्छा, सो नाइस ऑफ यू। और ये जो सारे प्रश्न जो थे हमारे दिन हर डे जो हम लोग फेस कर रहे हैं, तो हम आदरणीय दिव्या दीदी जी का और हमारे छोटे भाई गिरीश भाई का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। और हमें गिरीश भाई से यही और शुभकामना है कि और वेरी वेरी गुड यंग ब्रदर बनते जाएंगे, और है ना, और एक अच्छे प्रोफेसर तो वे हैं ही, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत अच्छा प्रश्न जवाब आप दोनों का लगा। अंत में मैं यही बताऊंगा कि विज्ञान, क्योंकि मैं विज्ञान का बैकग्राउंड में रहता हूं, तो मैंने बीच में एक बार एक बहुत अच्छा मैसेज पढ़ा था जहां पर ये कहते हैं कि विज्ञान ये ढूंढ रहा है कि मंगल में जीवन है या नहीं, लेकिन हमें आध्यात्मिकता ये सिखाती है कि हमारे जीवन में कितना मंगल आया है। तो यहां पर जब हम बैठे हैं तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि हम अपने जीवन को कितना मंगलमय, कितना अच्छा बना सकते हैं। व्हाट ही वाज स्पीकिंग अबाउट गुडनेस, हम कितना को इंट्रैक्ट करें। जस्ट इमेजिन करिए दोस्तों, अच्छी अच्छी बातें सुनकर कितना अच्छा लगता है। जस्ट इमेजिन करिए, वो अच्छी बातें जीवन में अगर आ गई तो हमारा जीवन सचमुच गुड होगा कि नहीं होगा। दीदी कुछ बोलना चाहते थे?
हाँ, मैंने कहा कि दोनों भाइयों का थैंक्स करते ना, तो मुझे याद आया उनके पापा भी आए हैं। यहाँ एक मिनट आए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, क्योंकि दोनों भाइयों को बचपन से इस आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए सहयोग देना, प्रोत्साहन देना, सपोर्ट करना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो कई लोग समझते हैं कुर्सी ले आना, कई लोग समझते हैं कि हमारे यंग बच्चे कहाँ आध्यात्मिकता में चले जा रहे हैं, ये लाइफ देखनी चाहिए, ये होना चाहिए ना, लेकिन इन बात को ना छोड़ करके इन्होंने यहाँ प्रोत्साहन सहयोग दिया, तो हम उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान करेंगे। दो शब्द बोलेंगे। हाँ,
तो हम अपने आदरणीय आदरणीय पिताजी का भी बहुत दिल से मंच पे स्वागत करते। थैंक यू दीदी जी, बैठे बैठे। और मैं चाहूंगा कि दो मिनट में आप अपना थोड़ा सा अनुभव या कुछ संदेश देना चाहते हैं तो जरूर। अचानक हो गया तो शायद पापा का दिल धड़क रहा है। दिल की बात है ना, हम दोनों भाइयों को तो बहुत, दीदी ने हमको ट्रेनिंग दी है कैसे बोलना है, पापा मंच पे अचानक बुला लिया, आर यू ओके? तो एटलीस्ट ओम शांति और दो कुछ शब्द जरूर बोलिए।
ओम शांति। वैसे आप लोग जो है ना सेवारत है, इधर जो है ना प्रोग्राम में आए हैं, वैसे हम भी जो है डिफेंस प्रोडक्शन में 35 साल करीब नौकरी करके जबलपुर में थे, सेवारत है। वैसे उस समय जो है हम भी आपका माफिक थोड़ा गुस्सा करते थे काम लेने बच्चों से भी, और जो है ना अपना जो नीचे जो काम कर रहे हैं उन लोग से भी जो है ना, ये जो भाईजी बोला है थोड़ा गुस्सा करना पड़ता है काम लेने के लिए। वैसे डिफेंस में काम किया है, वैसे बाबा मिले हमें रिटायरमेंट के बाद जो है, बाबा मिलने से जो है हमें जो है ना बहुत कुछ मिले, सब कुछ मिले जो है ना हमको जो है बाबा जो है हमारे हेल्थ वेल्थ जो है ये परिवार मिले, ईश्वरीय परिवार, हम कहीं भी जाए जो है ना इतना बड़ा परिवार, हमें जो मित्र संबंधी से इतना प्यार नहीं मिले हैं उतना प्यार जो है माँ बाबा से भी ये परिवार से भी हमें मिले, इसलिए हम जो है हमारी एज जो है आज यही जीवन चल रहा है, हम हेल्थी वेल्थी हैप्पी है। वैसे हमारा कोई दवाई का जरूरत नहीं पड़ा अभी तक, यही हमारा उम्मीद है बाबा हमें सब सब जो है ना हमारा हेल्थी वेल्थी हैप्पीनेस से है, हमारा जो है ना साथ ले जाएंगे। ओम शांति।
बैठे 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 बैठे। बाबा जो कह रहे हैं आप सभी को पता है, परमात्मा के लिए वो बाबा कह रहे हैं, तो हम सभी के है ना पिता हैं, एक है लौकिक पिता, हम मलयालम में उनको अच्छन कहते हैं। क्या कहते हैं, थोड़ा जोर से बोलो, नहीं डराओ नहीं ना, थोड़ा प्यार से बोलो ना। अच्छन मलयालम में पापा को कहते हैं। तो जैसे हमारे शरीर के पिता वो अच्छन है, लेकिन हम सभी आत्माओं के पिता को परमात्मा को अच्छन कह रहे हैं बाबा। तो सभी एक बार लास्ट में एक वो शब्द बोल के हम वाइंड अप करेंगे, सभी बोलिए मेरा बाबा, तो प्यार से बोलिए ना मेरा बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। तो बाबा का शुक्रिया, बाबा के इन सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी है ना जो श्रोतागण हैं ईश्वरीय परिवार में जो आए हैं, आप सभी भी बाबा के बहुत मीठे बच्चों का बहुत बहुत दिल से थैंक